नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं NL चर्चा।
नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट NL चर्चा। पिछले हफ्ते चर्चा में मैंने सुना शार्दुल ने आप सबका बहुत मनोरंजन किया है, तो आज मनोरंजन से थोड़ा दूर रहते हुए गंभीर खबरों पर हम लोग नजर जमाएंगे। हालांकि बहुत सारे लेटर्स भी आए हैं और मुझे लेटर पढ़ के अंदाज़ा लगा, क्योंकि मैं एपिसोड नहीं सुन पाया, पता चला कि पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छी खासी बातचीत हुई है, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो धन्यवाद आप लोगों के लेटर के लिए। हम उन लेटर्स को इसमें शामिल भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। हमारे जिन भी सब्सक्राइबर्स ने ये पत्र भेजे हैं उनको। और आज की चर्चा थोड़ी सी इलेक्शन के एकदम बीच माहौल में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी 5 बज चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी 3 बजे तक के आंकड़े हैं। पहले चरण के जिन 102 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन पर 3 बजे तक मिलाकर करीब औसतन 49% मतदान हुआ है। तो मेरे साथ स्टूडियो में हमारे साथी शार्दुल और विकास हैं, आप दोनों का स्वागत है बहुत बहुत चर्चा में।
हेलो।
और दो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, स्मिता हमारे साथी, विदेश मामलों पर लगातार उनकी रिपोर्ट्स, खबरें आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री पर उनके विचारों से अवगत होते रहते हैं। स्मिता इस समय उत्तर प्रदेश वेस्ट, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश
के बीच में खड़ी है,
खलिहानों के बीच से खबरें पहुंचा रही हैं, जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी, अपनी काम के प्रति एकदम मुस्तैद, तो वहां से हमसे जुड़ी हैं। वो उनसे भी पूछेंगे आज, जो थोड़े बहुत ग्राउंड से उनके पास खबरें होंगी उनको भी फिल्टर करके निकालने की छान कर कोशिश करेंगे। और साथ में मेरे साथ एक और स्वतंत्र पत्रकार हैं, काशिफ काकवी। काशिफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में।
थैंक यू सर।
तो बातचीत को शुरू करने से पहले, जो हमारी रस्मी रवायत है कि पहले सुर्खियाँ जान लें आप, और उस सुर्खियों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा शार्दुल के पास। शार्दुल,
तो पहली सुर्खी का आपने जिक्र कर ही दिया कि आज 18वीं लोकसभा का पहले चरण का मतदान इस समय चल रहा है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 102 सीटों पर चल रहे हैं, और जैसा आपने बताया 3 बजे तक करीब करीब 50% का आंकड़ा दिखा रहे हैं, इतना मतदान हो गया है। अगली बड़ी सुर्खी इस हफ्ते की छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को यानी मंगलवार को बस्तर इलाके के कांकेर जिले में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 29 माओवादी उग्रवादी मारे गए और 1 सुरक्षाकर्मी घायल हुआ। और बस्तर में आज मतदान है, लेकिन कांकेर में अगले हफ्ते 26 को है,
सेकेंड फेज में,
जी दूसरे चरण में होगा। और बस्तर के IG जनरल सुंदर राज पी उनका नाम है, उन्होंने जानकारी दी कि ये ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स और BSF का संयुक्त ऑपरेशन था।
अच्छा,
पहले से उन्हें सूचना मिली हुई थी।
थोड़ा कम जोर डालिए।
जैसा कि अनुमान आप लगा ही सकते हैं, अधिकतर सुर्खियां चुनावों से जुड़ी हुई होंगी। तो इस हफ्ते भाजपा ने चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी किया, उसका शीर्षक है मोदी की गारंटी।
मुझे एक कमेंट इस पर अचानक से आ गया,
भाजपा की भी नहीं रही अब तो।
तो मामला भाजपा की गारंटी से आगे निकल चुका है। और आप सोचिए कि पार्टी विद डिफरेंस कितना बड़ा नारा हुआ करता था, और ऑलमोस्ट कई मामलों में उस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में उसको स्थापित भी किया। मसलन जैन हवाला मामले में लालकृष्ण आडवाणी ने जिस तरह से चुनाव लड़ने से इनकार किया और लोकसभा उससे, तो वो पार्टी विद डिफरेंस का जो मामला था वो वास्तव में एक समय उस पार्टी के कल्चर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता था। वहाँ से चली हुई पार्टी विद डिफरेंस अब वहाँ पहुँच गई है जहाँ एक व्यक्ति की पूजा ही और उसकी परिक्रमा ही सारा ध्येय हो गया।
पार्टी विद डिफरेंस में बहुत कम समय के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया।
अब चाल चरित्र सब में सिर्फ एक चेहरा ही हावी है।
खैर, इस पर हम आगे बात भी करेंगे। तो
अच्छा, मुझे एक चीज और वसीफ से जुड़ी गारंटी वाली बात पे मुझे याद आया कि मतलब कैसे पत्रकार जो हमारे बीच में कुछ लोग हैं, वो लोग कुछ चीज़ों को या तो एकदम ही कुछ चीज़ों को लेकर एकदम इग्नोरेंट हैं, या बेसिक फैक्ट भी नहीं जानना समझना चाहते, या फिर जरूरत से ज़्यादा चापलूसी को हर जगह साबित करना उनका मतलब एकमात्र लक्ष्य रहा। जैसे ANI को पिछले हफ्ते जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिया, उस इंटरव्यू में एडिटर स्मिता प्रकाश साफ साफ कह रही हैं कि ये जो क्वाइन एक टर्म आपने क्वाइन किया है मोदी की गारंटी, और ये कितना बड़ा फ्रॉड है। अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी, और बहुत रीसेंट फिनोमेना है कि गारंटी वाला ये जो पूरा वर्ड शुरू हुआ, सबसे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी लेके आई कि ये पांच हमारी गारंटी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो व्हाटएवर, ये गारंटी हमारी आम आदमी। कांग्रेस पार्टी ने इसको गारंटी के तौर पर हिमाचल, हिमाचल से पहले और एक किसी स्टेट में, मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर गारंटी के तौर पर पांच गारंटियाँ इन उसमें, नहीं कर्नाटक से पहले ये सारी उसमें इंट्रोड्यूस की थी। वहाँ से बहुत एग्रेसिवली पिछले जो पांच विधानसभा चुनाव थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसमें मोदी की गारंटी फिर अचानक से हर मंच से मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, खुद मोदी ने अपने मुंह से कहना शुरू किया कि ये मोदी की गारंटी है। और ANI के एडिटर कहती हैं कि आपने एक टर्म कॉइन किया है, मोदी की गारंटी। एनीवे,
गारंटी शब्द तो पहले से है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, व्यक्ति जब तृतीय संज्ञा में खुद के बारे में बात करे तो आपकी कुकर की सीटी उठनी शुरू हो जानी चाहिए कि गड़बड़ हो गई है। खैर, तो इस संकल्प पत्र में उन्होंने इस चुनाव से ज़्यादा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में रूपरेखा दी है, ये उनका खुद का कहना है, भाजपा का। और बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी बातें हैं जो समय आने पर की जाएंगी, लेकिन एक बात वो है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन का भी वो कह रहे हैं कि हम लागू कर देंगे अगली बार तक।
और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोग, आम आदमी को स्पेस पर्यटन का भी प्रयास करेगी उनकी पार्टी मैनिफेस्टो के लिए, ठीक है। हाँ,
पानी मिला नहीं अभी। खैर, इस हफ्ते कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, उसमें दो तीन नाम चित परिचित हैं जिन्हें जनता में जानते हैं। एक तो महत्वपूर्ण है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हें जालंधर से टिकट दिया गया है और मीडिया में काफ़ी मशहूर रहे JNU में अपने बातों की वजह से। कन्हैया कुमार, उन्हें मिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने। और
स्मिता लगातार ग्राउंड से न्यूज को अपना अपडेट करती जा रही है, वहां पे किसी को भाई उधर से फुटेज भी ले लो, उधर से बाइट भी इकट्ठा करो, मैनेज करना ग्राउंड पे कितना मुश्किल होता है ये आप देख सकते हैं वीडियो में भी। हाँ,
मनोज तिवारी इकलौते भाजपा के दिल्ली में ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना टिकट बचा ले गए हैं, बाकी सब का पत्ता साफ हो गया है। तो अगली है, चिंताजनक खबर है मणिपुर से। मैती समुदाय के बाहुल्य वाले पूर्वी इम्फाल और कुकी जोमी समुदाय के बाहुल्य वाले कांगपोकपी जिले में मतदान से एक दिन पहले यानी कल 40 दिन की शांति के बाद गोलीबारी हुई। इसमें दो युवकों की जान चली गई और दोनों ही मृतक युवक जो थे वो कांगपोकपी जिले पे थे। उनकी पहचान हुई कमिनलाल लुफेंग और कमलेंग साथ लुमकिन, दोनों 22 और 23 वर्ष के बहुत जवान युवक थे। और आज अपडेट यह है, आज मतदान के दिन भी एक जगह से फायरिंग की खबर आई, एक छोटा सा वीडियो भी आया, लेकिन मतलब आप थोड़ी सी सांत्वना देने वाली बात यह है उसमें किसी के भी घायल होने के या और किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मणिपुर में भी आज मतदान हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया और आयोग से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें हैं तो मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। दो खबरें और हैं, पहली ये कि बुधवार को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस साल के चौथा महीना चल रहा है ये, इस प्रकार की जम्मू कश्मीर में होने वाली तीसरी घटना है जब एक प्रवासी मजदूर को मार दिया गया और ये हत्या थी, उसे पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई। मृतक का नाम राजा शाह था और उन पर डबलीपुरा इलाके में हमला हुआ। स्थानीय दलों और वहाँ के तो स्थानीय दलों ने ही मतलब, लेकिन राष्ट्रीय दलों ने भी सबने एक स्वर में पुरजोर इसकी निंदा की है। और आखिरी सुर्खी, आज हमारा समय रहा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, मध्य एशिया से। इस हफ्ते ईरान ने इसराइल के ऊपर सैकड़ों रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी जिसमें कुछ बैलिस्टिक भी थीं। ईरान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसराइल ने पिछले हफ्ते या उससे एक दो दिन पहले डमास्कस में उनके दूतावास पर हमला किया था जिसमें ईरान के सेना के अफसर की जान गई थी।
हम बातचीत करेंगे इस पर स्मिता से, स्मिता के पास इस पर कुछ न कुछ और जानकारियां अगर होंगी तो।
उसमें अपडेट फिर ये भी रही कि इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अच्छा है तो कोई बड़ी हानि नहीं हुई, केवल एक जगह बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ जहाँ एक बच्चे की जान जाने की खबर आई। लेकिन ईरान ने भी अपना सख्ती इस बात पर नहीं मतलब सख्त रुख नहीं छोड़ा है और इसराइल ने भी कहा है कि वो इसका बिल्कुल पुरजोर उत्तर देगा। अमेरिका ने लेकिन इस बार ये अंतर दिखाया, उन्होंने कहा कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है ईरान के ऊपर तो वो उसका साथ नहीं देंगे। बहुत से लोग, विशेषज्ञ और हमारे जैसे लोग जो लगातार इसको पढ़ते सुनते रहते हैं, उनमें से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का बिगुल है अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। तो सुर्खियां बस यही थी।
अरे बाबा रामदेव वाली खबर आपने ऐसा
पिछले तीन हफ्ते से लगातार बोल रहा था मैंने, इसलिए नहीं बोला। नहीं तो लाला जी की खबर हर हफ्ते मैंने बोली है।
पिछले रामदेव ने कह दिया कि मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं माफी भी मांगूंगा और प्रायश्चित भी करूंगा, आप मुझे एक मौका देकर देखें। ये खबर सुप्रीम कोर्ट में।
दूसरा ना बोलने का कारण था, आज मैं थोड़े रुष्ट मूड में हूँ तो मैं ज्यादा बोल जाता।
ओके, कई एक दो और भी खबरें हैं जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर को एक 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। हाँ। एक दलित युवक को ह्यूमिलिएट करने के
लेकिन
लिए
27 साल बाद
ये सजा सुनाई गई है। सोचिए हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया की गति क्या है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो कि फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट वर्सेज सेंटर का जो रिलेशनशिप है उसको एक बार फिर से थोड़ा उसमें उसको परिभाषित करती है। बंगाल के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देश के बाद अब वो एग्री हो गए हैं कि 6 जो यूनिवर्सिटीज़ थी हैं वहाँ की बंगाल में, उनको उनके VCs को नियुक्ति करने के जो रिकमेंडेशन सरकार ने दिए हैं, राज्य सरकार ने, उसको अब वो आगे बढ़ाएंगे और उस पर अपनी सहमति देंगे। तो ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं जो बहुत सारी संस्थाओं को वेपनाइज करने का काम हुआ है इधर बीच में। उनमें से एक ये भी है कि राज्यपाल की जो संस्था थी, मतलब जो चुनी हुई सरकार पर जिसको मुहर लगानी होती है, वो भी अड़कर खड़ा हो गया। केरल से बड़ी सारी खबरें आरिफ मोहम्मद खान से जुड़ी आपने देखी, अब बंगाल में भी वही प्रक्रिया,
तमिलनाडु में भी हो रहा था, शपथ नहीं दिला रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करी थी।
ईरान इसराइल वाले मामले में एक चीज़ और हुई है कि ईरान ने एक धमकी और दी है कि वो जो अपनी उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको फिर से रीइवैल्यूएट करके और रीकंसीडर करने का वो किया है अगर इसराइल अटैक करता है तो। तो ये सुर्खियां हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो चुनाव की थोड़ी बहुत जो सरगर्मियां हैं, जो सुर्खियां हैं, चूँकि फर्स्ट हैंड हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, स्मिता वहाँ पर हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से जो हमारे पास खबरें आई हैं उसमें एक चीज़ ये है कि शुरुआत में सुबह बड़ी संख्या में बहुत तेज़ी से मतदान देखने को मिला, खासकर सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर, और इसके बाद कैराना में और रामपुर से बड़ी सारी खबरें ऐसी आईं जिसमें ये आरोप लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों को पुशबैक कर रहा है, किसी को पहचान पत्र के नाम पर दो दो पहचान पत्र की बात डिमांड की जा रही है, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के बुरके खुलवा कर, तो उसकी वजह से लाइनें लंबी होती गई और वोट डालने की प्रक्रिया स्लो होती गई। आपने क्या पाया स्मिता?
अतुल, मैं जहाँ जहाँ गई यहाँ पर, क्योंकि हम तो मुजफ्फरनगर वाले एरिया में ही थे
जी,
बूथ्स पर सुबह के वक्त में स्मूथली हो रही थी वोटिंग यहाँ पर, लेकिन और एक तो मौसम की वजह से भी जो है दोपहर के वक्त में देखा कि काफी स्लो डाउन हुआ, तो वोट परसेंटेज अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तो नजर नहीं आ रहा है कि पता नहीं कितना फाइनल परसेंटेज आ सकता है। लास्ट के 2 घंटों में जो है भारी मतदान की उम्मीद की जा रही थी। देखिए, जहां तक वो बुरखा उठाकर आई कार्ड देखने का सवाल है, उसमें तो मुझे लगता है कि वो टेक्निकल सवाल है, क्योंकि वो तो आप आइडेंटिफिकेशन तो आप देखेंगे आई कार्ड के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए। जो दूसरी वीडियो आई थी जहां पर लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं और वहां खुद पुलिस के आला अफसर जाकर जो है एक तरीके से आपने जिसे कहा कि डबल आइडेंटिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। लेकिन जो बात यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि ये पिछले इस हफ्ते हम 2-3 दफा लौटे हैं इस एरिया में, एक की यहाँ पर वो बीजेपी की वेव वाली बात नजर नहीं आ रही है जो एक नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र जरूर है, यहाँ पर 8 सीटें आज गई हैं।
हाँ।
इन इलेक्शंस में, और आउट ऑफ द टोटल 102 सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो एक तो वो वेव वाली बात नजर नहीं आ रही है। दूसरा, कई सारी इंटरेस्टिंग लड़ाइयां हैं जहां पर मुझे लगता है कि कुछ कुछ इंडिविजुअल्स को जो जिस तरीके से हमने देखा, आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले नगीना से, वहां ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, वो एक साथ आई है, वो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। कैराना का आपने बात किया, यहाँ पर इकरा हसन यंग लॉयर हैं, 28 साल की हैं और लंदन से इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई कर आई हैं। उनके परिवार वाले जो है वो थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है, उनके पिता, उसके बाद उनकी माँ, वो सभी पॉलिटिक्स में हैं। और उनकी कैंपेनिंग के दौरान भी देखा कि उनका एक जो लहजा है वो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज तो है लेकिन एक ग्रेसफुल लैंग्वेज सा है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है, वो समाजवादी पार्टी के टिकट में है यहाँ पर।
हाँ
जो मुजफ्फरनगर सीट पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे संजीव बालियान के लिए लड़ाई आसान नहीं है, उनकी लड़ाई यहाँ अरिंदर मलिक से है जो समाजवादी पार्टी से, और संजीव बालियान जो कि बीजेपी से मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक तो जो प्रोजेक्शन केंद्र पर किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की सीटें क्रूशल है क्योंकि अगर ये फर्स्ट फेज की सीटों में उनके उनकी परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, तो इसकी एक लार्जर स्पिल ओवर देखने को मिलेगी अक्रॉस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स और अगले कुछ फेजेस में। सो एंड कुछ लोगों से जिनसे हम लोग बात कर रहे थे वो इस बात को पॉइंट कर रहे हैं कि खास करके जो अति पिछड़े वर्ग के जो वोट्स हैं या जो बहुत एक्सट्रीम जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जातियां हैं, उनकी वोट्स बड़ी हद तक स्प्लिंटर हो रही हैं। तो कुछ पॉकेट्स है जहां पर वोट्स बहुत डिवाइडेड हो रही हैं, और समुदाय के बेसिस पर ज्यादा हो रही हैं, धर्म से ज्यादा। मुझे लग रहा है वो कम्युनल पोलराइजेशन उतना नजर नहीं आ रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके मुकाबले जो जातीय ध्रुवीकरण है वो कहीं ज्यादा नजर आ रहा है इन सीटों पर।
तो काफ़ी एक एक फर्स्ट हैंड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो स्मिता ने हमें दिया। स्मिता चूंकि ट्रैवल कर रही हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी, उनकी आवाज़ बीच बीच में एक आध जगह ग्लिच हो रही है,
जी
उसका
सॉरी,
हमें
मेरी गाड़ी में हमारे क्रू मेंबर्स भी हैं, अभी हमें
हाँ
रुक करना है एक गांव से दूसरी तरफ,
हाँ
इसीलिए
ठीक
फ्रेम में
बात।
भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे।
यस, तो चूंकि शार्दुल और विकास हमारे साथ हैं और ये लोग चुनाव को यहीं से देख रहे हैं अपने घरों से और न्यूज़ रूम से, तो इनका जो फर्स्ट फेज को लेकर ओपिनियन है इन 102 सीटों पर राजनीति को ले उस पर भी बात करेंगे। मैं काशिफ आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अभी कहाँ पर बेस्ड हैं इस समय काशिफ?
मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा।
तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट फेज की कितनी सीटों में मतदान होना है आज?
मध्य प्रदेश में आज 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ज्यादातर इसमें सब बैकवर्ड क्लास की सीटों पे ज्यादा है इस बार चुनाव। जैसे शहडोल हो गया, मंडला हो गया,
जी
छिंदवाड़ा और बालाघाट,
जी
उसके अलावा सीधी। तो इन 6 सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कुछ सीटों पे स्ट्रांग दिखती है। सीधी में जो जहाँ पे कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को मिल रही, क्योंकि वहां पे बीजेपी के ही एक पूर्व राज्यसभा एमपी ने रिजाइन देकर के अजय प्रताप सिंह वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, जिस वजह से एक त्रिकोणीय मामला वहां पे हो गया है। सीधी ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट थी पिछले कुछ वक्त से। बालाघाट भी एक बीजेपी ही की सीट है, लेकिन इस बार क्योंकि असेंबली जो चुनाव हुआ इसमें इसके बावजूद 8 में से 5 सीटें वहां पे कांग्रेस ने जीती, तो एक उम्मीद की जा रही है कि वो अगर रिपीट होता है तो काफी बेहतर होगा कांग्रेस के पक्ष में। मंडला एक ही बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जो कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी
हाँ
के बड़े नेता हैं और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं कई सारी चीजों में उनके, वो लड़ रहे हैं और अभी हाल में असेंबली चुनाव में भी उनको पार्टी ने टिकट दिया था, वो हार गए और इस बार वो उनके सामने ओमकार सिंह मरकाम है जो कि वो भी एक आदिवासी नेता है उभरते हुए कांग्रेस के, और उन्हें महासचिव भी बनाया गया है हाल में। तो वहां पे उनकी हालत फग्गन सिंह कुलस्ते चूंकि पिछले 20 से 25 सालों से, लगभग 30 सालों से मैं कहूँ, वो वाजपेयी की कैबिनेट में भी मंत्री रहे थे, तो उनकी एक बहुत एक लेगेसी है, लेकिन उसका असर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो असेंबली चुनाव भी हारे, और इस बार एक बहुत अच्छी वहां पे पोजीशन बताई जा रही है कांग्रेस की कि वहां पे है, और वोटर्स का जो ओवरऑल मूड है इस बार इतनी विपरीत स्थितियों के बाद भी जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो आदिवासी वोटर वो ज्यादातर वो कांग्रेस की तरफ ही झुका दिखना दिखा मिला था। तो इस तरह से जो 5-6 सीटें हैं ये ज्यादातर इन पे हम ये नहीं कह सकते कि सब पे केक वॉक है जैसा 2019 में मिला था, क्योंकि उस दौरान एक सिंगल मोमेंटम था जो सबको जोड़ रहा था, चाहे वो देश भक्ति का मामला हो, चाहे वो पेट्रियोटिज्म हो, चाहे वो मोदी जी का मैजिक हो, इस बार वो उस तरह की वेव नहीं है और कास्ट इक्वेशन काफी इंपैक्टफुल है कई सारी जगहों पे।
फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत दिलचस्प कैरेक्टर हैं एक लिहाज से, अगर बात करें तो उनका स्टिंग ऑपरेशन एक दो बार हुआ है
दिलचस्प नम्र शब्द है।
और जिस स्टिंग ऑपरेशन में वो पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के आरोप लगे उनके ऊपर, कई सारे सांसद थे, केवल वही नहीं थे, बहुत सारे सांसद उसमें उस स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते थे। फग्गन सिंह कुलस्ते मेरे ख्याल से दो बार स्टिंग में फंसे, ऐसा अगर मैं सही हूँ तो। खैर ये तो एक बात हुई उसकी, लेकिन इन लोग आप लोगों की स्मिता कुछ कहना चाह रही है, उनका ऑडियो म्यूट है। हाँ
नहीं, मैं बस एक ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि जो काशिफ ने भी बात कही ना, वो बड़ा सिमिलर लग रहा है मध्य प्रदेश और यूपी के
हाँ
जो की कास्ट का डोमिनेंस की जो बात बार बार हो रही है, यहाँ पे भी आप हर गांव में, यू नो, इट स्ट्राइक्स मी, आप विलेज आफ्टर विलेज इंडिया में जब जाते हैं, और खास करके जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर जिस तेवर, जिस कलेवर के साथ जातीय समीकरणों को लेकर ना केवल बातचीत होती है, बल्कि माइक्रो स्टडी होती है, मैक्रो डिटेल्स में लोग जाते हैं, उसकी जानकारी होते हैं, और पुरुष प्रधान कॉन्वर्सेशंस होते हैं, यहाँ महिलाएं नजर नहीं आती हैं इन गोष्ठियों में बात करते हुए जाति को लेकर।
बिल्कुल
लेकिन वो ठाकुर हो, वो आपके आप जाटों की बात कर रहे हैं, जाटवों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग दो चीजें नजर आई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम जब गन्ना बेल्ट की बात करते हैं, RLD जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में गई है, एक बड़ा तबका है जो इससे खुश नहीं है, खास
अच्छा
करके किसानों का वो तबका, जिन्हें लगा कि भाई आपने हम लोग एक तरीके से अभी तक इंस्पायर किया और हमें कहा कि आग सामने जाकर लड़ो किसानों के मुद्दे पर, और उसके बाद जो है आप खुद ही पलट जाते हैं, जो हमें सिपाही लीड कर रहा था वही चले जाता है दूसरे दल में। तो एक भ्रम की स्थिति है, लेकिन वो इस हद तक स्थिति नहीं पहुंची है कि वो RLD के खिलाफ जानबूझकर जाकर इस वक्त जयंत चौधरी के खिलाफ पर से एज एन एंगर उसको डायरेक्ट करे, क्योंकि काफी जगह पे अगर वो RLD से नाराज भी हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट मान लीजिए कि अगर किसी और धर्म का है जिनमें वो पसंद नहीं करते हैं, वोट नहीं देना चाहते हैं, तो वो उस बाबत जो है कम RLD के साथ ही वोट दे दे रहे हैं। तो एक वो बात है, और दूसरी एक ऑब्जर्वेशन जो निश्चित रूप से बड़ी क्लियर है, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं कहीं ज्यादा है, भले ही ये चुनाव नरेंद्र मोदी पर रेफरेंडम हो, लेकिन जिस तरीके से बातचीत लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर हो रही है, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है जब हम बीजेपी के आने वाले सालों की हम बात करें।
ठीक बात है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो समझ में आई वो कि हमारे खासकर मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर बात करूँ तो अभी 6 महीने पहले वहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे जो रहे हैं, उस नतीजों के हिसाब से कुछ भी कह पाना कि किसी की वेब चल रही है या नहीं चल रही है, थोड़ा सा वो होगा या मतलब प्री मेच्योर होगा, क्योंकि ग्राउंड पर जिस तरह के नज़र आए थे हालात, हमें उस समय भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन उस पूरी स्थिति को पिछले हर बार से ज़्यादा बड़ा मैंडेट बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल किया, तो जिससे ये चीज़ें कई बार मुझे लगता है कि हम भी एज अ पत्रकार रीड करने में चूकते हैं। और दूसरी बात ये कि स्मिता की बात और आसिफ की उस बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि ये 2019 उस लिहाज से नहीं है। 2019 उस तरह का माहौल था जो हम लोग उस समय जब कवर कर रहे थे उसमें ये बात दिख रही थी कि उस समय मोदी जिसको भी लड़ा देते वो जीत जाता या वो जीत रहा था, क्योंकि मोदी के नाम पर लोगों की या मोदी की वेब में, उनके छवि में लोगों का एक इस तरह का आकर्षण था कि कोई भी जीत जाता। अभी वो स्थिति 2024 में नहीं बची है। मैं जिन इलाकों में गया हूँ पिछले कुछ दिनों में, 3, 4, 5 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में, अब मोदी पिछली बार या उसके पिछली बार में जो जो एक उनका क्लीन स्लेट था कि कोई बर्डन नहीं था, अब वो बर्डन के साथ हैं वहाँ पर सामने, और लोग एक तरह से रिपोर्ट कार्ड मांगने की स्थिति में हैं। तो एक स्ट्रेटजी बीजेपी की जो ये रही कि जो पिछले 2 बार से या 1 बार से पिछला जो उम्मीदवार है उसको बहुत सारे लोगों टिकट काट के एक और नया उम्मीदवार दे दो, पर ऐसा हो नहीं रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उम्मीदवार बदल देने से क्या होगा, तो ये एक चीज दिख रही है। शार्दुल और विकास, आप लोगों का पहले ये जो चरण में चुनाव हो रहे हैं वहां के बारे
तो
में।
मैं वहीं उस बात से शुरू करता हूँ जो आपने बोली, कि अब डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये हो गई है कि भले ही जनता खुलकर मांग ना रही हो, उनकी समर्थक भी, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है कि भाई आप 10 साल से काम कर
सत्ता
रहे
में है।
हैं,
हाँ
लोग महंगाई भले ही आपसे कहीं नहीं झेल तो रहे ही हैं, बेरोज़गारी बड़ी है। अभी वो जो CSDS का सर्वे आया था, उसका पिछले हफ्ते जिक्र भी हुआ था चर्चा में, उसमें था कि लोगों के नज़र में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उनमें से दो तो महंगाई और बेरोजगारी ही हैं।
ILO की जो रिपोर्ट आई,
हाँ नहीं, CSDS का सर्वे भी
CSDS का
था,
सर्वे, हाँ
CSDS का सर्वे
CSDS
था
का था, ILO की भी रिपोर्ट आई बेरोजगारी को
जी।
लेकर।
तो मतलब जनता CSDS वाले में जनता मान रही है कि उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट सवाल पूछने की अभी भी फिराक में ना हो, लेकिन अब ये डिफॉल्ट पोजीशन है कि भाई अब आप 10 साल से काम कर रहे हो, आप इससे बच नहीं सकते, अब तो आप ही
जवाबदेही बनेगी ना।
हाँ,
जवाबदेही कब होगी?
दूसरा, जो खासतौर से कैराना और मुजफ्फरनगर वाले इलाके में, तो संजीव बालियान जी से तो परिचय वैसे भी है, लेकिन संजय बालियान और संगीत सोम का आपस में बिल्कुल
मतलब पटकी पटका वाली स्थिति है,
शतरंज की खेल चल रही है वहां, वो एक दूसरे की काट कर रहे हैं,
दत्कटौल होगा आपस में दोनों
उनके समर्थक तक में। मैं आपको बताऊं, मेरा बचपन का एक दोस्त है जो संगीत सोम का बड़ा जानने वाला है, तो वो बिल्कुल भी, उसने फेसबुक तक पे पोस्ट करनी बंद कर दी, जो एक विचित्र बात है आज की भाजपा में, तो उनका बिल्कुल ऐसे कटान चल रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है वो सीट फंस जाए, मैं व्यक्तिगत रूप पर चाहता हूँ फंसनी जरूर चाहिए, निर्विवाद रूप से जीतने में चुनाव का मज़ा नहीं आता। और यही मुजफ्फरनगर और कैराना लगे हुए क्षेत्र हैं, तो ये तो रही बात उसकी। जो कुलस्ते जी वाली बात कर रहे थे तो वो अलग लोग हैं, लेकिन हमारे हृदेश जी ने रिपोर्ट की थी तो उसके ज़रिए मुझे थोड़ा पता चला कि उनके खिलाफ़ भी नाराज़गी तो है। वो चुनाव में कितनी आएगी, जैसा आपने कहा, उसको पढ़ पाना कोई साइंटिफिक वो नहीं है, क्राफ्ट नहीं है ना, वो आर्ट है, वो तो केवल जो जनता के मन में आए, क्योंकि एक चीज़ पर लोग वोट नहीं करते, लोग अनेक कारणों की वजह से करते हैं। इस वाले में जो मध्य प्रदेश में एक सीट मुझे रोचक लग रही है वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि भाजपा वो लगी हुई है कि वो एक सीट भी वो एक बार खींच जरूर ले, क्योंकि इस बार नकुलनाथ हैं, कमलनाथ खुद भी नहीं है, हालांकि नकुलनाथ पिछली बार भी थे, बट
नकुलनाथ पिछली बार थे और कमलनाथ कैंपेन कर रहे हैं, तो शायद बेटे को लेकर, और कोई होता तो शायद एक बार को लगता कि भितरघात होगा और कांग्रेसी बदनाम है इसके लिए, बेटे के लिए शायद भितरघात लग रहे
हैं। पुत्र मोह अभी भी जीवित है। और कई सारी सीटें हैं, मतलब जैसे नागपुर में नितिन गडकरी भी किया, अभी आप महाराष्ट्र पर नहीं आए, असम में वो तरुण गोगोई वाली है, गौरव गोगोई के बेटे गौरव गोगोई वाली है, और वहाँ डिलिमिटेशन भी हुआ है, तो उस बार उनकी टेक्निकली सीट बदल गई है, जोरहाट हो गई है, तो ये सब तो चल ही रहा है। एक चीज और, जो
तमिलनाडु की, बाय द वे, सारी की सारी सीटें इसी 39 की 39 सीटें इसी फर्स्ट फेज में हो रही है,
तमिलनाडु
भी बहुत इंटरेस्टिंग है,
तमिलनाडु पर तो मैं मतलब
उत्तराखंड की भी 5 सीटें इसी में हो रही है,
मैं अज्यूम कर रहा था कि आप आएंगे तमिलनाडु और उत्तराखंड पे, क्योंकि उनकी सारी सीट जा रही है। एक दो छोटी छोटी बात और, इस चुनाव में अमूमन भाजपा समर्थकों में भी वो उत्साह नहीं दिख रहा जैसा पिछली बार दिख रहा था, उसके कारण अनेक होंगे ऑफ कोर्स, पर और इन जनरल भी आप देश में देखें तो चुनावों का बड़ा, खासतौर से लोकसभा चुनाव का बड़ा मेला सा होता था, ये त्योहार की तरह था,
इस बार का चुनाव बहुत साइलेंट,
उदासीन
सा
है, हर और किसी को पूरा मजा नहीं आ रहा।
और मोदी के लिए हो ना हो, ओवरऑल बीजेपी सरकार के लिए एक फटीग जो फैक्टर होता है, हाँ, वो सेट इन हो रहा है धीरे धीरे, लग रहा है लोगों को ठीक है,
उदासीनता आ गई है, क्योंकि वो कितनी बार है, अब मोदी जी के भाषणों से भी लोग ऊब गए, उसमें रेपिटेशन खूब आ गया है,
इसीलिए शायद मतलब नेता बहुत शातिर होते, इसीलिए शायद एक ओवर एस्टिमेट दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, जबकि अगर फैक्ट और नंबर्स पे बात करी जाए तो बीजेपी उन्हीं नंबरों पर मैक्सिमाइज अगर करेगी, पिछली बार को रिपीट करेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि 2019 बीजेपी का
मैक्सिमम था,
पीक है, उसके अलावा 13 स्टेट हैं नॉर्थ इंडिया के जहां पर बीजेपी 100% के आसपास चली गई थी, चाहे वो कहीं और, प्लस चाहे वो बंगाल में अनएक्सपेक्टेड 18 रही हो, 39-40 में बिहार रही हो, उत्तर प्रदेश रहा हो,
लेकिन अतुल मुझे लग रहा है कि ये कहीं बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ना किसी के लिए बढ़िया नहीं,
ये तो हमारा अपना आकलन है, इट्स नॉट ओवर
कॉन्फिडेंस, हो सकता है खुद लोग ही सोचे कि नहीं नहीं आपकी नहीं कह रही हूँ मैं, कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ना, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है 400 पार, कहीं लोग खुद ही ये ना सोचे कि
फिर भी माइल्ड टेम्परेचर मई जून में,
अभी तो गर्मी सर चढ़ के आएगी। मैं ये कह रहा था आपकी बात पे कि आप देखिए पिछली बार अभूतपूर्व गेंद थे राज्यों में, और ये उत्तर भारत के कुछ राज्य तो बिल्कुल फुल 100% पे चली रहे हैं, एक आध सीट के अपवाद को छोड़ के, जैसे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, नहीं तो राजस्थान पूरा, गुजरात पूरा, ये सब चल रहा था। कांग्रेस का अभूतपूर्व बुरा प्रदर्शन था महाराष्ट्र जैसे में, जहाँ उनकी पकड़ है आज भी किसी हद तक, उसमें भी एक सीट थी। उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ के भाजपा के अभूतपूर्व गेंद थे, तो वो भी है और उदासीनता है ही, बाकी तो अभी चलेगा ही चुनाव।
कुछ हद तक तो सर बातचीत हो गई है, पर एक चीज़ मुझे लगता है, जैसे मैं पिछली चर्चा में उदासीन तक तो हमने जिक्र किया था, लेकिन इस बार जैसे वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि इस बार बीजेपी भी थोड़ा सा दिमाग से काम ले रही है। वो कार्ड जरूर मोदी जी की गारंटी का है, पर उम्मीदवार बड़े वैसे चुने जा रहे हैं जो भाजपा के कैडर के साथ अपना जिनका वोट जुड़ा हुआ है। अगर स्पेसिफिकली जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में 6 से 7 उम्मीदवार तो सारे कांग्रेसी हैं, उनका अपना पर्सनल वोट बैंक है, वो किसी भी पार्टी में जाएंगे तो उतने वोट तो उनको मिलेंगे ही। उसके बाद बीजेपी शायद स्ट्रेटजी हो सकती है ये मान के चल रही हो कि हमारा वोट बैंक कुछ घटा है, 39-40 में से कुछ परसेंटेज हमारा घटा है और उम्मीदवारों के सहारे हम जीतेंगे, तो लास्ट में मोदी की गारंटी जो है वो सारे उम्मीदवारों को के जरिए पूरी होने वाली है अगर जीतेंगे भी तो।
एक चीज, एक और चीज होती है इलेक्शन में, या मतलब जो इस तरह का व्यक्ति केंद्रित पूरी राजनीति होती है, उसमें एक चीज एक टाइम पे बहुत पीक पे रहती है, जैसे कि एक व्यक्ति की लोकप्रियता, जैसे मोदी जी की लोकप्रियता, उस दौर में जो काम वो नेता करता है वो चीज एक टाइम के बाद आकर कैसे उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जैसे जब बहुत पॉपुलर हैं आप, तो आपने डेमोक्रेटिक लीडरशिप, बड़े लीडरशिप के लिए स्पेस खत्म कर दिया, सारे बड़े लीडर्स जा चुके हैं, मतलब ऐसे फेसेस हैं कि अननोन फेसेस आपके चारों तरफ हैं, उनकी सारी के सारी डिपेंडेंसी मोदी के ऊपर है कि मोदी का चेहरा चला तो जीते, नहीं चला तो हार गए। और ये एक ना एक दिन होना ही है कि हर दिन ये चेहरा चलेगा नहीं, तब वो जो फटिक हो, ये जो लाइट वेट चेहरे हैं जिनकी अपनी कोई कदकाठी नहीं है, जिनकी अपनी कोई व्यक्तित्व नहीं है, पहचान नहीं है, फिर वो एकदम से डिमोलिश करते हैं जाके। वो होगा आज नहीं तो कल होगा, 2 इलेक्शन बाद हो शायद ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चक्रव्यूह में है। लोग कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, लेकिन पार्टी का पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन एक फिगर के इर्द गिर्द कर दिया गया है।
नहीं, मैं मेरे दिमाग में एक दो बड़े मैंने नोटिस की थी चीज़ें। एक तो आपकी बात से, आप लाइट वेट कह के उन्हें बड़ी इज्जत दे रहे हैं, अस्तित्वहीन नेता हैं। और एक चीज़ मैंने देखी जो भाजपा के इतिहास में पहली बार हो रहा है, भाजपा इस चुनाव में पहली बार अभूतपूर्व संख्या में दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए हुए लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं।
हाँ, और चुनाव लड़ रहे हैं,
चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए,
मुख्यमंत्री
पूरा
है, सब कुछ है।
उत्तर पूर्व
उन्हीं की जिम्मे,
और चलिए वो तो मुख्यमंत्री भी हैं, जय पांडा उत्तर प्रदेश के हैं, वो उड़ीसा से आने वाले, और ऐसे असंख्य लोग आपको मिलेंगे। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही, जो स्मिता बात कह रही थी ना, मेरे दिमाग से एक मिनट को उड़ गई थी वो बात, कि वो 370 और 400 वाली बात वही है कि वो अपने कार्यकर्ता को तो धक्का दे पाए कि वो उतने ऊर्जा से काम करें, क्योंकि फटीक सब जगह है भाई। जो आप बात कह रहे थे, चाहे मुझे सांभर चावल कितना ही पसंद हो, अगर मैं रोज वही खाता रहूंगा तो मुझे एक हफ्ते बाद लगेगा यार, विविधता स्वाद भी तो लाती है आम जीवन में, वो विविधता खत्म है।
काशिफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
दो बातें मैं बस जोड़ूंगा सर, इस मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, और चूंकि मैं थोड़ा सा कुछ दिनों तक उत्तराखंड में भी रहा था,
ओके,
तो मैं उसको भी जोड़ूंगा, क्योंकि 5 सीटों की वहां पे है। तो मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा में आता हूँ। छिंदवाड़ा में आपने देखा कि बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पे छोड़ के गए, और उनको संघ ने अप्रोच किया और वो चले आए। और ऐसे उसमें वो लोग थे जो कमलनाथ जी के साथ पिछले 30-40 साल से काम कर रहे थे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है विक्रम आहाके, जो मेयर बने हैं, और वो 4-5 लगभग पिछले हफ्ते वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली थी बीजेपी की, और उन्होंने कहा था कि राम मंदिर और एबीसीडी। लेकिन उन्होंने आज एक वीडियो जारी किया वोटिंग के दिन, ये कहते हुए कि हमसे गलती हुई थी और हमने देवता जैसे आदमी पे जो है वो के खिलाफ गया मैं, उनको आप भर के वोट करें। उनके समर्थन में बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया। तो जो माहौल, जो हाइप क्रिएट किया है पार्टी ने वहां पे, चाहे वो अमित शाह जी की रैली से हो, चाहे वो मोहन यादव की रैली से हो, क्योंकि कमलनाथ हैज नर्सेस हिज कंस्टिट्यूएंसी वेरी वेल। 2-3 पॉइंटर्स हैं जिसपे जिसके इर्द गिर्द बात होती है। 2019 में जब मध्य प्रदेश की बगल की सीट बालाघाट में 2.5 लाख वोट से कैंडिडेट जीता, वहां पे ही सेव्ड हिज सीट विद 39,000 वोट्स। इस बार वैसे हालात नहीं है, और इसको लेके काफी डिबेट हो रहा है कि होता है कि भाई वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या माहौल है क्या नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो पार्टी की मशीनरी है वो अभी तक आदिवासियों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर नहीं पाई है हर हिसाब से, है ना। तो अब छिंदवाड़ा बाय एंड लार्ज आदिवासी बहुल एरिया है। हम बात करते हैं कि भाई नागपुर में संतरा, नागपुर का संतरा बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा से जाता है। छिंदवाड़ा में हर साल कॉर्न की खेती होती है, एक ये लगता है इवेंट होता है। जिसमें साल में हर जगह से कॉर्न के लोग आके अपने अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उसके अलावा रिंग रोड है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में आया वो कोई आदमी हाइप क्रिएट करके उसको खराब कर दे सकता है। ऊपर से जो वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी इमेज बड़ी अच्छी नहीं है। ही वॉज सीन एज एक्सटॉर्शनिस्ट और वुमनाइजर, दीज टू आर द मतलब इट्स एन ओपन इन पब्लिक। तो ये कह सकते हैं कि लड़ाई है, पार्टी ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन ये कहना कि निकाल लेगी थोड़ा सा मुश्किल अभी
चलिए
डिसीजन होगा।
ठीक बात।
और मैं अब आता हूं मैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, उसमें खास के पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा, ये 2 सीटों पे कांग्रेस की पोजीशन अच्छी बताई जा रही है मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई। और जो 2 मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहे वो मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो या इधर का हो, यहाँ पे अग्निवीर एक बड़ा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से बड़े
यस
पैमाने पे लोग आर्मी में जाते हैं। मध्य प्रदेश का रीवा सतना का बेल्ट और दूसरा ये ग्वालियर चंबल का बेल्ट, यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स जाते थे आर्मी में। एक इकलौता वही जरिया था जो गरीब के बच्चों को 22-23 साल 24 साल की उम्र में एक नौकरी मिल जाती थी, लेकिन वो छिनने से एक बहुत रिजेंटमेंट है। और इसका असर यहाँ देखने को मिल रहा, उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा कि 5 सीटों में 2 पे ऑलमोस्ट ये एकदम से 50-50, खास के पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें, जहां पे पूरा एक आर्मी का एक बेस रहा है, वहां पे गणेश बोदियाल है, वो लगातार इसी पे बात करते हैं कि भाई गुजराती अगर आर्मी में जाता तो क्या इस तरह की स्कीम लाई जाती। तो एक्सटेंसिवली इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों पे जहां पे कैंडिडेट्स मजबूत हैं वहां पे इक्वेशन बड़ी मजेदार है।
ठीक बात
ग्वालियर
है।
चंबल में कांग्रेस ने बड़ी मजेदार इक्वेशन खड़ी की है अलग अलग सीटों पे। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो थोड़ा बहुत कैंडिडेट के मुकाबले देखने को मिल रहा है, वो चुनाव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
मैं शार्दुल आपसे थोड़ा सा तमिलनाडु के ऊपर जानना चाह रहा हूँ कि तमिलनाडु के चुनावों की जो स्थिति है, वहाँ की सारी सीटें एक फेज में जा रही हैं। एक तो ये इलेक्शन कमीशन की जो रणनीति है, कई बार समझ से बाहर है
जी
कि आप उतनी ही सीटें करीब करीब हों तो बंगाल में आप 7 फेज में करा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में आप सात दो ज़्यादा है लेकिन बिहार में आप 7 फेज में करवाएंगे, और उतनी ही सीटें हैं तमिलनाडु के तो एक फेज में निपटा देंगे। क्या बहुत शरीफ लोग हैं या बहुत यहाँ पर वायलेंट लोग हैं, मतलब ये क्या हम क्या कहते हैं इलेक्शन। दूसरा ये तमिलनाडु में चल क्या रहा है।
देखिए, तमिलनाडु की राजनीति की मुझे उतनी समझ नहीं है, क्योंकि एक तो भाषा की दिक्कत आती है। अगर आपको राजनीति समझनी है तो आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ मैंने तमिल सीखनी शुरू कर दिया, तो अगले साल तक आ जाएगी, मैंने रेगुलर क्लासेस लेनी शुरू कर दिया। पर तमिलनाडु में पूरे पे मतदान हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा उत्तराखंड में भी। इसमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर भाजपा की पैठ बहुत कम है, लेकिन मैंने 2 चीज़ ज़रूर नोटिस करी, कम से कम मेरी नज़र में व्यक्तिगत तौर पर, जो मैंने इंटरव्यू देखे अनेक चैनलों पर उनके अन्नामलाई के, भाजपा को अंततः एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो अगर टूट कर नहीं गया तो वो वहाँ उनके लिए अड़ा रहेगा, और वो जनता को आकर्षित भी कर रहा है वहाँ की। वो वहीं का व्यक्ति है, वो उन्हीं की भाषा में बात करता है, वहाँ के लोकल मुद्दों को समझता है, और जो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो उनके इंटरव्यू में मुझे एक के बाद एक दिखी, जबकि इंटरव्यू लेने वाले अलग अलग प्रकार के पत्रकार थे। लेकिन अन्नामलई बिल्कुल कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रणनीति और दूर तक की रणनीति के लिए बड़े मुझे स्पष्टवादी दिखे, तो ये भाजपा का प्लस है। दूसरा, भाजपा वहाँ पहले भी सीटें जीत चुकी है, उनका मैक्सिमम अटल जी के समय पर 4 था, वो 4 सीटें एक बार जीते थे, लेकिन और मोदी जी के साथ 2014 में कन्याकुमारी जीते थे, एक सीट थी वो। अगर भाजपा कैपिटलाइज कर जाती है वोटों पे, क्योंकि जो अन्नामलाई ने कई इंटरव्यू में बोला कि उनका अभी का लक्ष्य है कि वो चाहते हैं कि वो वोट परसेंटेज में 20% पहुंच जाए, और फिर उनका अगले साल जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, सॉरी विधानसभा के, उसमें उनका फिर वो 25% पार करने का है, क्योंकि उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 20% एक बार पार कर जाएं तो फिर आपकी ग्रोथ मतलब ऑर्गेनिक हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। बाकी तो वहाँ डीएमके ही जीतेगा, लेकिन डीएमके का बेस पॉइंट अधिकतर लोग ये कह रहे हैं, और जो जितना समझ आ रहा है जो वहाँ के पत्रकार बता रहे हैं अंग्रेज़ी में, कि 35-34-35 तो आ ही जानी है, ये उनका बेस पॉइंट है। जैसे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं ना लोग भाजपा का कि 65 है, इससे कम तो नहीं आएंगी। तो कांग्रेस डीएमके के गठबंधन को लोग कह रहे हैं 30-35 आ ही जाएंगी। पर आप औरों से भी बात करें तमिलनाडु के, मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा ये, मतलब नहीं तो फिर आरोप लग जाता है, अरुणाचल में आज विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं साथ में, वहाँ पे एक सीट का तो लोकसभा है, वहाँ विधानसभा की भी वोटिंग चल रही है आज, और सिक्किम में भी, तो और बिहार में एक सीट है बहुत ज़रूरी गया में, जहाँ पे जीतन राम मांझी वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मेंशन किए जाने लायक नाम ज़रूर है।
ठीक बात है। एक चीज़ है, तमिलनाडु की राजनीति में आपने अन्नामलाई का जिक्र किया, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक चीज़ जो बहुत मजबूत है, जो हमेशा से बीजेपी के लिए को रोकने का काम करती रही, वो है वहाँ की जो बहुजन राजनीति, जो जो पेरियार की पॉलिटिक्स है जो आई है वहाँ पे, दलित और पिछड़ों की जो राजनीति में है वहाँ पर, और उसमें भी द्रविड़ पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर पेरियार की रामायण कोई पढ़ लेगा तो आज के ज़माने में पेरियार को यहाँ पर उत्तर भारत में तो शायद फांसी पे ही चढ़ा देगा, मतलब जिस तरह की ब्लास्फेमी है उसमें, मैं ब्लास्फेमी नहीं कहूँगा, जिस तरह का उसमें आलोचना है,
बहुत उग्र है वो,
तो पेरियार ने, और पेरियार इलॉजिकल होकर रामायण की आलोचना नहीं करती, ये भी है क्योंकि मैंने पढ़ रखी है,
हाँ,
ऐसा नहीं कि आपको लगे कोई की कोई रेंट मार रहा है किसी चीज को लेके, तो वो लॉजिकल एक तो एक चीज, दूसरी बात ये कि वो जो हिंदुत्व और द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में हिंदुत्व हमेशा कम से कम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आगे का मतलब भविष्यवाणी करना तो कोई समझदारी नहीं, फिर भी इट्स एवरेस्ट टाइप चढ़ाई है कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को ओवरकम करके कोई राजनीति वहां पर स्पेस बना,
हाँ, वो उनका वो अंतिम लक्ष्य है। इसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते किया था, प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते तक का मुझे आंकड़ा पता है, इस हफ्ते मैंने चेक नहीं किया, 10 हफ्ते में 60 ट्रिप लगाई है तमिलनाडु की, प्रधानमंत्री बहुत जोर लगा रहे हैं वहां पे, रैलियां भी खूब कर रहे हैं, और इतनी सारी बात हुई, हम ये नहीं कह रहे कि जैसे नॉर्थ के स्टेट्स में हमने कांग्रेस और इन सब की बात की, भाजपा ही का पलड़ा बहुत भारी है नॉर्थ में, ऐसे ही दक्षिण में तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का पलड़ा ही भारी है, ये तो केवल बात हो रही है कि वो प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ आपने जो कही थी उसका वो सवाल भी मैंने पिछले हफ्ते पूछा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि फेज का नंबर कैसे डिसाइड करता है चुनावी आयोग, हर बार एक बार नंबर बढ़ता जा रहा है वो, तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था, वो संतोषजनक जवाब इंटरनेट पे भी नहीं मिला कि कोई लॉजिक, मतलब चुनाव आयोग देता नहीं कि वो किस हिसाब से करते हैं
फेज, मतलब 7 फेज में चुनाव,
हाँ 7 फेज में, और कि कहाँ कैसे चुनाव होगा,
पिछली बार भी 7 ही फेज था
नहीं, लेकिन उससे पहले 5 थे, उससे पहले 4 हाँ, थे, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना,
तो
और जो एक बात आनंद ने बोली थी पिछले हफ्ते कि वो सुरक्षा बलों का इधर से उधर जो मूवमेंट है उस पर ये काफी डिपेंड करता है,
वो मतलब पूरी जो इलेक्शन मशीनरी है वो उसका मूवमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा कंसर्न रहता है, लेकिन स्टेट इलेक्शन करवाए हैं चुनाव आयोग ने,
हाँ?
तब यही लॉजिक तब उल्टा हो जाता है जब हाँ? वो उत्तर प्रदेश जैसे एक स्टेट का भी चुनाव कराने के लिए कई बार 7 फेज में चला जाता है, और बिहार में भी चला जाता है, या बंगाल का 7 फेज में करवाने लगता है, तब समझ में नहीं आता कि अगर वो पूरे देश का चुनाव 7 फेज में करवा सकता है तो वो 2 फेज में एक स्टेट का क्यों नहीं करा सकता। खैर
यही मेरा पॉइंट था कि पारदर्शिता हाँ। इस निर्णय के पीछे की नहीं है, तो हमें पता नहीं चल पाता हाँ। कि मतलब उसका लॉजिक क्या।
मुझे लगता है कि इस पे बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन के टॉप होल्डर्स हैं जैसे चुनाव आयुक्त है मुख्य, वो उस तरह से पब्लिक ओपिनियन देते नहीं है ये लोग जब तक पद पे रहते हैं, तो कोई ना कोई लॉजिक शायद उनके पास हो भी।
जी जी बिल्कुल, वो तो होगा ही ऑफ कोर्स।
तो हम आगे बढ़ें, अगले विषय पर बढ़ें, उससे पहले मैं एक और जानकारी आप लोगों को, जानकारी नहीं अपील है कि हमारा जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का इलेक्शन फंड है इसको पूरा करवाएं। हमारे कुल 6-7 फंड थे, इसमें से 3 तो पूरे हो चुके हैं, 4 फंड अभी भी चल रहे हैं, उनमें से जो भी आपको पसंद लगे, आपको लगे कि ये स्टोरी आपकी स्टोरी है, आपकी बात है, उसको पूरा कराने में हमारी मदद करें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रायोजित उस के अपना कार्यक्रम के पत्रकारिता करता है आपकी मदद से, यानी अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से। तो इन तमाम इलेक्शन फंड्स को पूरा करने में हमारी मदद करें, और लेटर ज़रूर भेजें, हमारे पास 3 हमारे सब्सक्राइबर्स के लेटर हैं जिनको हम आगे शामिल करेंगे। तरीका बहुत आसान है, आप सीधे जाकर www.newslaundry.com/podcast-letters वहाँ पर जाकर हमें अपने पत्र लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि सीधे आप हमें मेल कर दीजिए podcasts@newslaundry.com, सब्जेक्ट लाइन में चर्चा जरूर लिखिए ताकि पता चले, क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं तो पता चलना चाहिए कि किस पॉडकास्ट के लिए आपने ये पत्र भेजा है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दुनिया में एक नए किस्म का संकट खड़ा हुआ है, और अभी कुछ दिन तक, पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, इसके बाद गाज़ा में शुरू हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट था हमास और इसराइल का, वो चल ही रहा था। इस बीच में एक नया मोर्चा खुल गया है, ईरान ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, कुछ मिसाइलें दागी। हालांकि इसराइल का दावा है कि उसने बहुत सारे उनके मिसाइल्स को और ड्रोन हमले को विफल कर दिया है। इसकी जो वजह रही, ईरान के हमले की जो वजह रही, वो थी दमास्कस में जो इजरायली मिसाइल गई और उससे उनके जो कॉन्सुलेट के 12-13 सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हुई। उसका बदला लेने के लिए इजरायल ने ईरान ने ये कदम उठाया। इजरायल का दावा है कि वो बदला लेने की कार्रवाई ज़रूर करेगा। ईरान का ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ करने की भूल करता है तो ये इजरायल को बहुत भारी पड़ेगा, उसको ये महंगा पड़ेगा और हम इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब देंगे, बहुत कड़ा जवाब देंगे। तो ये जो इसराइल और ईरान के बीच नया संकट खड़ा हुआ है, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। जो हमारे तमाम खबरिया चैनल हैं हिंदुस्तान के, उनकी बात अगर मानते हों आप, तो उनका ये कहना है कि विश्व युद्ध की बस दरवाजे खुल गए हैं इससे, तो विश्व युद्ध एनीवे भारी भरकम शब्दों को, शब्द अपनी गरिमा कैसे खो देते हैं, कई बार सब शब्द अपने मायने खो देते हैं। ये अगर जानना हो तो आप किसी भारतीय हिंदुस्तान के हिंदी भाषा के न्यूज़ चैनल को देखिए, वहाँ पर हर दिन विश्व युद्ध होते रहते हैं, कार्यक्रम ही दंगल फसाद और इस तरह के नामों से शुरू होते हैं। तो काशिफ, आप ये जो शुरू हुआ है इसराइल और इसमें, इस पर आपकी कोई पहली टिप्पणी अगर हम जानना चाहें किस तरह के।
बहुत नजदीक से मैंने नहीं देखा है इस चुनाव, इसको, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, मैं नेम के साथ नहीं बता सकता, लेकिन जो कुछ आर्टिकल्स मैं लगातार पढ़ता आया उसके जरिए जो निकल के आता है कि इसराइल सीइंग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस घटना को उन्होंने लिया और लगातार वो जो उनकी कोशिश थी कि गाजा को और सिकोड़ा जाए और उनको और कमजोर किया जाए, वो एक मौका इन लोगों ने दे दिया और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको ये शक जताते हुए कि इन टेररिस्ट संगठनों को ईरान सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने उनके बॉर्डर्स पे हमला शुरू किया, उनके जनरल को मारा। पिछले साल अगर ध्यान हो तो उनके एक जनरल को भी मारा गया था और उनकी इस बार बरसी थी, उसपे भी बमबारी की गई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। तो लगातार वो प्रवोक कर रहे थे उनको कि किसी तरह से जो है इनको कमजोर किया जाए या इनको टारगेट किया जाए, लेकिन ये समझ से थोड़ा सा परे है कि आखिर इसराइल इससे क्या करना चाह रहा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो आसपास जो घिरे हुए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके अलावा ईरान बहुत प्रमुखता से बोल रहा है, उनके साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन जियोलॉजिकली वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो जिस तरह के हमले हो रहे हैं कुछ तरह से वो रिपील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी, क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर को अपने रीएक्टिवेट करने की बात कर रहा है और इधर वापस आपके नेतन्याहू की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो वॉर कमेटी है वो भी ये कह रही है कि हम रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे जो ये ड्रोन हमले हुए हैं हमारे ऊपर। अब ये आने वाला वक्त काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से कि कैसे चीजें टर्न आउट हो रही है। और एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि चूंकि ईरान से हिंदुस्तान का एक सीधा ये रहा है, खास करके पेट्रोल को लेकर के और ट्रेड को लेकर के हमारा अच्छा रहा है ईरान से, तो जाहिर सी बात है कि वो सफर अगर ये वार खिंचता है तो हिंदुस्तान को सीधा इस पे असर तो पड़ेगा ही।
जो भारत में ईरान के एनवॉय हैं, राजदूत हैं, उनका भी एक बयान आया है कि भारत की भूमिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, कि वो इसराइल को संयम बरतने की तरफ ले जाए, साथ में गाज़ा में जो हो रहा है गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की तरफ पुश करे ताकि स्थिति हालात सुधरें। शार्दुल,
देखिए ये एक तो जैसा आपने कहा, लाइक शब्दों के वज़न को भूलना नहीं चाहिए जो हिंदी चैनलों पर हो जाता है। जो भी विश्व युद्ध अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जो भी विश्व युद्ध कह रहा था उसको एक मिनट को अपनी रीढ़ की हड्डी में वो सेहरन महसूस ज़रूर करनी चाहिए कि आज के ज़माने में, इस युग में जब तकनीक कहीं पहुंच गई है, आप जिस चीज़ का ऐसे ही मजाक में हल्के में जिक्र कर दे रहे हैं, लेकिन युद्ध किसी के लिए नहीं होता, जो जीतता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता युद्ध, ये लोग भूल जाते हैं जोश में और ब्लड लस्ट जिसे कहते हैं ना, जो इसराइल में इस समय खासतौर पर है, जो रक्त पिपासु जो प्रवृत्ति हो गई है, इसके कई आयाम हैं। पहली बात तो ये जो भिड़ंत हुई, रॉकेट और ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल भी थी कुछ, उन्हें छोड़ने की, उसमें इसराइल निर्विवाद रूप से विजयी रहा, क्योंकि आयरन डोम तो केवल दूसरा है, उनके और भी जो मिसाइल संरक्षण के जो टेक्नोलॉजी हैं, जैसे एरो का काफ़ी इस्तेमाल हुआ जिससे मिसाइलें ईरान की ध्वस्त की गई, तो निर्विवाद रूप से विजयी रहा, ईरान नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन ये जो वहाँ पे घोर दक्षिणपंथी जैसे राजनीति है वहाँ पर इसराइल में, जो बिल्कुल ज़ायनिस्ट है, ये उसके नेतृत्व करने वाले हैं जो इस तरह को बढ़ावा दे रहे हैं, और बीबी नेतन्याहू इसके लिए मशहूर हैं जो प्रधानमंत्री हैं उनके, और वो ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ लगातार 7 अक्टूबर से जब से ये हो रहा है, गाज़ा वाला जो ये प्रकरण शुरू हुआ था, उनके खिलाफ विरोध इसराइल के अंदर भी बढ़ता जा रहा है, सड़क पर प्रदर्शन भी लगातार हुए हैं, और जैसे ही ये नेतन्याहू भी जानते हैं, जैसे ही ये सारी चीज़ ठंडी होगी उनका पत्ता साफ हो जाएगा, उन पर भ्रष्टाचार के मामले पहले से ही थे, ये तो इसराइल की तरफ का हुआ। ईरान अपने आप को हमेशा से पॉस्चर करता रहा, मतलब बताता रहा है और मानता है कि हम मध्य एशिया में और इस्लामिक
वर्ल्ड का एक
विश्व में वो एक बड़ी ताकत हम हैं, वो ये मानता है, बताता है,
इस्लामिक वर्ल्ड के गुरु के तौर पर भी देखना चाहता है वो। ये अलग लड़ाई है, टर्की अपने को इस्लामिक वर्ल्ड का वो स्थापित करने में लगा,
उनका एक आमना सामना जो है वो अन्य इस्लामिक देशों से, तो एक ये भी चीज है। दूसरा, मतलब ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, इसराइल जो ये सब कर रहा, भारत का जो रोल होगा, भारत का कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। असली बैकर इसराइल का हथियारों में, पैसे में और जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका। और अगर इस ये अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि ये मेरा रुचि का विषय है तो लगातार हम अपडेट रहते हैं, मैं इसीलिए इसे कह भी रहा हूँ। अगर इसी रास्ते पर ये चलता रहा इसराइल, अमेरिका में प्रतिरोध अब उस स्तर पर पहुंच गया कि पहली बार अमेरिका ने अभी घोषणा की थी इसी हफ्ते कि इसराइल अगर प्रत्युत्तर देता है ईरान की टेरिटरी पे, तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। और पुतिन ने घोषणा की थी कि अगर अमेरिका इसराइल की तरफ से युद्ध में उतरता है तो वो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से उतरेंगे, इसीलिए वो विश्व युद्ध वाली दी जा रही थी परिकल्पना, जो लोग उपमा दे रहे थे। एक चीज़ और, ये जो हमले किए ईरान ने, इसका कारण जैसे आपने कहा डमास्कस, उसने इसलिए भी किया, उसे अपना चेहरा बचाना था, क्योंकि ईरान पर ही हर तरह का आरोप ये लगाते रहते हैं, उसकी गलती है, वहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बढ़िया सरकार नहीं है, वो भी अपने लोगों का दमन करती है। हमने पिछले साल देखा ही था, केवल महिलाएं अपना सर खोलना चाह रही थी तो कैसा बुरी तरह प्रदर्शनकारियों का दमन किया गया, बहुत बुरी तरह। लेकिन आप साइड चुने बिना भी उस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। ईरान को अपना चेहरा बचाना था, क्योंकि अगर वो इस बार भी प्रतिउत्तर नहीं देता, गाज़ा का इतना सब चल रहा है, हमास का सबको पता है कि परोक्ष रूप से ईरान ही सपोर्ट करता है, जो आजकल शिपिंग में हो रहा है, मेरे दिमाग से देखिए नाम निकल गया, यमन के जो वो हैं, जो लोग आजकल सी रूट पर कब्जा किए हुए हैं, जहाज़ों पर कब्जा कर रहे हैं,
पायरेट्स जो,
हाँ वो भी हूथीस, यमन के जो हूथी हैं ये सारे, उन्हें भी ईरान ही हथियार सप्लाई करता है और राजनीतिक सपोर्ट करता है। तो ईरान के पास अपने परोक्ष एक्टर भी बहुत हैं उस रीजन में। लेकिन इसराइल की ये सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने उनके रीजन में जाके हमला किया, और अब भी वो इस ये जो एक भिड़ंत है सीमित तौर पर, इसको जीतने के बाद भी अगर वो शांत नहीं होंगे तो इसके दूरगामी परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे।
अमेरिका का तो खैर मामला बहुत साफ है, अमेरिका मेरे ख्याल से जब संयुक्त राष्ट्र में ये जो स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का प्रस्ताव, उसको भी वीटो कर दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका तो खड़ा है, जा वो साफ दिख रहा है। लड़ाई में शामिल होना नहीं होना एक स्टैंड हो सकता है, लेकिन अमेरिका इसराइल के साथ है,
हाँ
अमेरिका इसराइल को ही राष्ट्र मानता है, ये बात भी बिल्कुल साफ है।
अगर अमेरिका हथियार और मदद ना दे तो महीना भर नहीं लड़ पाएगा इसराइल।
तो ये जो यूरोपियन देशों का अपना एक वो है, अब प्रॉक्सी वार भी आप कह सकते हैं, जो भी
ये नस्ल भेद, इसमें नस्ल भेद भी है
कि आप यूक्रेन के कंधे से बंदूक चलाना चाहते हैं, खुद सामने नहीं आएंगे, आप इसराइल को 50 तरीकों से 50 टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप फिलिस्तीन के कॉज को वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी मुकाम पर नहीं ले जा पा रहे हैं, एक बहुत जेन्युइन बहुत वैलिड जो मांग है। तो ये सारा जो वेस्ट का अपना दोहरापन है, चारित्रिक दोहरापन है उसके स्टैंड में, ये सारी चीज़ें भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं उस तरफ ले जा रही हैं जहाँ पर 40-50 सालों बाद दुनिया एक किस्म की उस जटिलता में फंसी है जहां पर कोई भी एक बहुत छोटी सी चीज किसी बड़े युद्ध को दे सकती है।
एक छोटा सा मैं रोचक तथ्य श्रोताओं को बताना चाहूंगा ये, और मैं इसे नस्ल भेद क्यों कह रहा हूँ, लाइक व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स का। अभी देखिए, जब भी किसी पश्चिमी यूरोपीय या अमेरिकी उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट के किसी पे भी हमला होता है तो ये लोग देशों में घुस के मारते हैं, लेकिन औरों को भाषण देते हैं। और इसराइल
उसमें नेटो का भी हिस्सा है ना, कि नेटो उसका हिस्सा होगा तब तो उनके अपने,
मतलब लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आपके नागरिकों की जान, यानी जो गैर सफेद नागरिक है उनसे। और एक चीज और, इसराइल में, इसराइल के अंदर दो तरह के, मतलब जो बड़ा डिवाइड है ज्यूइश पॉपुलेशन में भी, वो जो यूरोप से आए थे जो श्वेत ज्यू हैं उन्हें अश्कनाज़ी ज्यू कहते हैं, उनकी जनसंख्या मिज़राही ज्यू से कम है, जो जिनका विस्थापन एशिया के देशों से हुआ था जिसमें ईरान वीरान सब कुछ थे। जनसंख्या में ज़्यादा होते हुए भी मिज़राही ज्यू में वहाँ पे जो अधिकतर रूलिंग क्लास है वो अश्कनाज़ी ज्यूज की है, और ये भी वहाँ पे लगता है। बाकी जो वहाँ पे अरेबिक पॉपुलेशन है इसराइल की अपनी, वो तो बिल्कुल सत्ता से बाहर है, वो तो दोहरा नागरिक पुनः दे ही रखा है।
ठीक बात। तो इस मामले पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जिनकी वास्तव में एक्सपर्टीज़ है, स्मिता थी, लेकिन वो चूंकि बाहर हैं फील्ड में जहां पर हैं वहां पर इस समय हमसे उनका संपर्क टूट गया है। विकास, आप अपनी बात इस युद्ध पर, इस पूरे मसले पर किस नज़रिए से आप देखते हैं?
एक तो ज़्यादातर बातें तो सर ने कही हैं ठीक से, अगर ये है कि पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें कैसे कैसे चेंज होती रहती हैं, तो उसमें थोड़ा सा जब मैं पढ़ रहा था तो ईरान और इसराइल का अभी जो भी इक्वेशन है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान पहला देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी,
और बिल्कुल पूरी तरह इसराइल और इराक और ईरान जब आपस में 10 साल तक लड़ते रहे तब एक तरफ खड़ा था इसराइल इनके साथ,
तब ईरान सबका दोस्त हुआ करता था।
तो वो मुझे ध्यान आया कि ये वो ज़रूरी है बताना। फिर जिस तरीके से 1989 के आसपास शायद चीज़ें बदली, 79 के आसपास जब क्रांति हुई, और तो वे इक्वेशन चेंज होती गई और फिर दोनों के बीच संबंध भी ख़राब होते गए, पॉलिटिकल टाइज भी उन्होंने ख़त्म कर लिए। तो एक तो वो है, और दूसरा जहाँ तक हिंदी चैनलों और युद्ध की बात हो रही थी तो मुझे वो ध्यान आ गया कि हो सकता है कि इस बार भी किसी के पापा युद्ध रुकवा दें।
हाँ, इसमें तो भी युद्ध रुकवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी भारतीयों की संख्या रहती है, तो इस तरह के बहुत सारे वाकये आ सकते हैं जब पापा को युद्ध रुकवाना पड़ जाए। अगला हमारा विषय है जो कि छत्तीसगढ़ में, जो शार्दुल ने जिक्र किया था कि कैसे वहाँ पर एक बड़े लंबे अरसे बाद एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें 29 माओइस्टों की मौत हुई है, और उसमें बड़े माओवादी लीडर शामिल हैं। सीपीआई माओवादी के बड़े लीडर्स जो हैं, जो वहाँ पर सक्रिय थे, उनकी इसमें मौत हुई है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जल्दी से वो लेटर्स हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स के, उनको पढ़ देता हूँ, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और फिर आखिर चर्चा इस हमले के ऊपर करेंगे, इस मुठभेड़ के ऊपर करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जो हुई। बस्तर संभाग में पड़ता है कांकेर, तो 2-3 जिलों का जो संभाग है उसमें कांकेर भी एक जिला है। जो पत्र हैं, पहला पत्र ओनिका का है, 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से आया था, पिछले हफ्ते इसको शामिल होना था लेकिन मैं ये नहीं था शायद, इसलिए इसको इन लोगों ने पिछली बार
नहीं, एक ही दिखा था मुझे तो पिछली बार, वो मैंने पढ़ लिया था।
अच्छा, ओके, ठीक बात है। तो हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप, ये पत्र आपको संबोधित था, आप थे नहीं इसलिए इसको उन्होंने रोक दिया था। हाय चर्चा टीम, थैंक यू फॉर अमेजिंग वर्क यू डू। I did not know it was possible to elevate an already amazing work, but Atul's tippni in the last few months has topped itself and has been a remarkable political satire. I wish to see the episodes with my mom when I visit her next time. Hope she enjoys. What do you think of the high profile exit from Congress and others to BJP? It's apparent that the current BJP revolves only around a special duo, but what do you think is going to happen in the next few years post this duo? I feel they are going to implode. Not that I will be upset about it if they continue to go at the same pace, as no one else within BJP is given space and outsiders are being celebrated. Or are they happy being where they currently are with the current structure of power and money? तो मेरे ख्याल से बहुत इसी स्पेसिफिक विषय पर हमने अपनी बात थोड़ी देर पहले रखी थी कि कैसे कुछ टाइम के बाद वो चीज़ जो चीज़ एक टाइम पे आपको डिविडेंड देती है, बाद में वो आपके ऊपर बर्डन बन जाती है और उसका नुकसान उसका होता है। हाँ, तो ये चीज़ इसी पर मेरे ख्याल से बात हुई। और टिप्पणी आपको पसंद है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप मदद करें, हमारी सब्सक्राइबर्स बनाने में मदद करें, लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी, सबसे बड़ी हेल्प होगी और न्यूज़ लॉन्ड्री की पत्रकारिता आगे बढ़ पाएगी। अगर इस वाले मसले पर जो उन्होंने जो मोदी और शाह के इर्द गिर्द जो केंद्रित भाजपा का कल्चर बढ़ रहा है, जिस पर शार्दुल और विकास आप लोग अपनी राय रखना चाहें।
नहीं, मुझे कुछ नहीं रखना इस पर, तो दो हफ्ते पहले हमने दल बदलने और इस पर विस्तार से चर्चा की ही थी, जब कांग्रेस की भी बात हुई थी भाजपा की भी, तो मुझे विश्वास है ओनिका ने सुनी ही होगी। तो
एक सवाल जो सर मुझे लगता है, जो कहा कि हाई प्रोफाइल एग्जिट फ्रॉम द कांग्रेस, तो वो मुझे लग रहा है कि उसमें दो चीज़ें हैं, मुझे संबित पात्रा ध्यान आ जाते हैं, क्योंकि वो भी टीवी के लिहाज से तो बहुत हाई प्रोफाइल थे लेकिन ग्राउंड पे जीते नहीं, और पिछले 2-3 सालों से अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस बार जीतने के लिए, तो शायद जीत भी जाएं।
लोग कह रहे हैं जीत
डिपेंड
सकते हैं।
कि हाई प्रोफाइल का जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से, जो लोग कांग्रेस में थे निश्चित तौर पर वो प्रवक्ता के तौर पर बहुत अच्छे थे, आइडियोलॉजिकली वो अच्छे से डिफेंड कर रहे थे, उनमें गौरव वल्लभ हों या रोहन गुप्ता, जो दो लोग बड़े नाम जिनके।
इसमें क्या है कि कई सारे फैक्टर हैं, जो हाई प्रोफाइल एग्जिट्स के कई फैक्टर हैं, उसको उस तरह से देखने की जरूरत है। जैसे एक फैक्टर है बहुत कॉमन फैक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका है कि जैसे किसी की कमज़ोर नस पकड़ में किसी की आ गई और उसको उस तरह से तैयार कर लिया गया कि या तो हमारी मदद करो नहीं तो तुम जेल में जा सकते हो। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखें चीज़ों को, तो जो पार्टी सत्ता में रहती है, बहुत ताकतवर रहती है, उसके पक्ष में नेताओं का, मतलब खासकर 1%, 2%, 3%, 5% हिस्सा होता है, जैसे वोटर स्विंग करता है लास्ट मोमेंट पे, कि वो डिसाइड नहीं रहता कि एकदम फिक्स कि मैं, एक तो कोर आइडियोलॉजिकल वोटर होता है, फिक्स रहता है कि मैं बीजेपी को ही दूंगा, मैं वामपंथियों को ही दूंगा या मैं कांग्रेस को। स्विंग वोटर होता है जो आखिर में जाता है कि यार इधर ताकत है तो चलो इधर चलते हैं, उधर जा रही चलो उधर चलते हैं। उसी तरह से एक पॉलिटिकल क्लास में भी एक बड़ा हिस्सा है जो सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहता है और रहता है, और उसके हिसाब से अपनी लॉयल्टी चेंज करता रहता है। जैसे मुझे याद है 98-99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो अपने एंड की तरफ बढ़ रही थी, तो बड़े सारे लोगों की उस समय भी एंट्री हुई थी, और उसमें तो बहुत बड़ी जो कामयाबी थी वो थी एक गांधी को, मतलब वरुण गांधी को जिस तरह से प्रचारित किया। हालांकि मेनका गांधी तब तक इंडिपेंडेंट लड़के बीजेपी को सपोर्ट करती थी, लेकिन वरुण गांधी ने पार्टी ज्वाइन की, सदस्यता ली, तो ये। और 2008-09 वाला पीरियड अगर देखें तो बड़ी संख्या में भाजपा छोड़कर लोग कांग्रेस और एनडीए यूपीए का हिस्सा बन रहे थे।
इस बार भी सर
लेकिन
कांग्रेस में,
लेकिन ये बात सही है कि इस बार की जो गति है, जो पेस है, वो ज्यादा है, तेज है, क्योंकि इससे पहले इतना स्कैटर्ड विपक्ष भी नहीं था जितना स्कैटर्ड आज की तारीख में। ये बात बहुत ईमानदारी की है कि मतलब जिस तरह से संगठित हो जाना चाहिए, जैसे इमरजेंसी तो एक बहुत एक्सेप्शनल केस था कि जहां पर सारा विपक्ष हो गया था इकट्ठा, लेकिन उसके बाद भी नरसिंह राव के बाद जब एनडीए बनाया बीजेपी ने, उसके संरचना की, तो एक तरह से संगठित हो गए थे, कॉमन एजेंडा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, एक नाम था उसमें पार्टी का। वो चीज़ जो है कॉमन मिनिमम एजेंडा जैसी चीज़ों का की अनुपस्थिति, एक प्रॉपर सेक्रेटरिएट की अनुपस्थिति इंडिया अलायंस के, एक प्रॉपर चेहरे की अनुपस्थिति कि कौन कन्वीनर है, कौन संयोजक है, कौन से वो देख रहा है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं मिसिंग अभी, तो पेस ज़्यादा है। दूसरा अंशुल रावत का है लेटर। नमस्ते अनिल चर्चा सभी सदस्यों को, चर्चा 314 पर्यावरण पर हुई, चर्चा बहुत ही रोचक थी, हृदय जी का पर्यावरण लगाव उनकी हर टिप्पणी में दिखता है। इस चर्चा में आनंद जी की टिप्पणी की रियलिस्टिक गोल्स नहीं रखे गए थे टोक्यो समिट में, पर अब थोड़े रियलिस्टिक हैं, इससे मैं थोड़ा सहमत हूँ। मैं कोई पॉलिसी का जानकार नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर समय अगर पर्यावरण के बारे में किसी सरकार कोई कदम उठाना होगा तो वो युद्ध स्तर पर करना होगा। पेरिस में हुई कॉप सम्मेलन से के लगभग सभी लक्ष्य को पाने में हम विफल रहे हैं, और अभी भी हम सोच रहे हैं शायद बिटर सेंस विल प्रिवेल, परंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा। और हम जब भी पॉल्यूशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के संदर्भ में बात करते हैं, हमारी सरकारें सिर्फ वाहनों पर रोक लगाने की बात करती हैं, परंतु कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो पॉल्यूशन के फैक्टर हैं खासकर महानगरों में, वो कई सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलकर यहाँ सब चीज़ों को गंदा कर रही हैं। तो एक बहुआयामी पॉलिसी की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और अंशुल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि 200 शब्दों में अपने भाव को मैं व्यक्त नहीं कर पाया, तो मैं दूसरा आगे थोड़ा सा इसको और बढ़ा रहा हूँ, और पिछले पत्र का ये विस्तार है। ये स्थानीय वास्तुकला को बढ़ावा मिलना चाहिए, खासकर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में भी हम डिज़ाइन को इस प्रकार करें कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। एनर्जी एफिशिएंट, एनवायरमेंटल एफिशिएंट, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में आ रही हैं धीरे धीरे। बाकी इस चर्चा में 5 पुर्तगाली युवकों द्वारा किए गए केस मुझे अभी हाल ही में देखी गई एक वेब सीरीज़ की याद आ गई जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, 3 Body Problem, काफ़ी रोमांचक साईफाई सीरीज़ है। और यूएन की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि बताती है साल 2023 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 21% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद अंशुल ने हमें लॉन्ग लिव एंड प्रॉस्पर, तो हमें ये भी उनके शुभेच्छा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा का एक और लेटर है, शार्दुल
मैं पढूं?
हाँ,
रेखा लिखती हैं, राइटिंग टू अप्रिशिएट द एक्सेलेंट डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द इनक्रेडिबल फैक्ट दैट आई हर्ड द वर्ड्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑन अ पॉडकास्ट। धन्यवाद रेखा। आई थिंक चर्चा रियली ट्रायम्स वेयर हफ्ता मिजरेबली फेल्स इन हैविंग नुआंस्ड कॉन्वर्सेशंस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज के लिए ही शार्दुल को पहले लानत दी जाए और फिर तारीफ की जाए?
लानत कहाँ मिली मुझे,
क्योंकि शार्दुल हफ्ता और चर्चा दोनों में रहते हैं।
तो भाई वहां पे मैं डिक्टेट नहीं करता था, मैंने पिछले हफ्ते कहा था इस बार अतुल नहीं है तो मैं पकड़ लेता हूँ अपनी पसंद का विषय। खैर, तो आई वांटेड टू सजेस्ट दैट यू हैव अ लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड इन हिंदी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
दिस इज वेरी गुड आइडिया एक्चुअली।
तो मैंने ये लिख लिया है, अगले हफ्ते मेरी मीटिंग है तो हम उसमें प्रपोज करेंगे, जो पाइपलाइन में है पहले वो समाप्त हो जाए उसके बाद ये करेंगे। आई डोंट थिंक देयर इज इनफ डिस्कशन ऑन दिस इशू इन हिंदी। द टर्म जलवायु परिवर्तन, इवन इफ इट्स एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, फील्स लाइक अ यूफेमिज्म एंड हैज नॉट केप्ट अप विद द वेज in which the issue of climate change has been referred to in English. Example, global warming, climate change, global heating. Keep up the good work. तो मैं दोनों के लिए बोल देता हूँ संयुक्त, अंशुल के पत्र के लिए भी, क्योंकि वो एक से ही इशू थे। तो रेखा, पहले आपका जो छोटा सा है कि जलवायु परिवर्तन, अब मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी वाला बदलता रहा क्योंकि उन्हें अमेरिका की गुड़ बुद्धि को, हमें भारतीय गुड़ बुद्धि लगते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिकन कहीं ज़्यादा गुड़ बुद्धि हैं। उन्हें पहले गर्मी, फिर लोग कहने लगे कि नहीं ठंड पड़ रही है तो क्लाइमेट चेंज से, तो ग्लोबल वार्मिंग आप कैसे कह सकते हैं, तो फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज लाए थे। ग्लोबल हीटिंग भी बीच में कहीं आया था, और भी, क्योंकि वहाँ पे ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, हमारे यहाँ एक्सेप्टेड है लेकिन काम नहीं हो रहा। तो जो मैं अंशुल के उसकी भी बात है, अंशुल है क्या कि सारी चीज़ एक साथ होने की ज़रूरत है। और हृदेश ने और मैंने अलग अलग समय पर यह उदाहरण बहुत बार दिया है, ये बिल्कुल वही धीरे धीरे पानी उबलते हुए मेंढक वाली सिचुएशन है। और ये मानव समाज की कमी है कि अधिकतर लोगों के पास दूरदर्शिता नहीं होती, हम पास की नुकसान और फ़ायदा पहले देख पाते हैं। ये इतने बड़े लेवल की चीज़ है कि अब हमें वो गति आमूलचूल परिवर्तन में चाहिए, तो बहुत तेज और बहुत बड़ा परिवर्तन, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि सबके निहित स्वार्थ हैं।
ठीक बात,
यही दिक्कत है आज की डेट में। जो आपने पॉइंट उठाए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ वो नहीं, उनके साथ आपको जैसे बिजली पर पिछले हफ्ते बात हुई थी वो भी करना पड़ेगा, और वाहनों में भी करना पड़ेगा, घर के कंस्ट्रक्शन में तो करना ही है, उसके लिए लोग तैयार नहीं है, फिर पैसा नहीं है, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी आ जाती है।
तो पत्र हमें भेजते रहिए, आपके पत्रों से, सुझावों से हमें मदद मिलती है, जैसा कि इसमें एक LTA का जिक्र आया
जी,
और वो हम कोशिश करेंगे कि उसको शामिल करें, उसको करें। अगला विषय जो है हमारा, जो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, उसमें 29 नक्सली मारे गए, जिसमें कई सारे बड़े नक्सली नेता शामिल हैं। और एक लिहाज से पिछला कुछ साल देखें तो हम जो मुठभेड़ों की, नक्सली हमलों की जो फ्रिक्वेंसी थी, जो उसकी निरंतरता थी, उसमें कमी आई थी, और ख़ासकर 2015-16 के बाद से काफ़ी उसमें गिरावट देखने को मिली। और आम तौर पर पहले जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के लोग निशाना बनते थे, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो एक ये बड़ी सांत्वना की कहें आप की बात है। लेकिन ये जो साल है इसमें थोड़ा सा अगर नंबर्स को हम देखें तो ये नंबर्स थोड़ा चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 2019 ऑनवर्ड अगर हम देखें तो नंबर्स बहुत कम थे मुठभेड़ों के और नक्सलियों के माओवादियों के मारे जाने की संख्या के हिसाब से देखें तो ये एक सर्ज है, इसमें बढ़ावट है, बढ़ोतरी है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये चिंता की भी बात है कि क्या ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और फिर से कोई नई शुरुआत हो रही है। 19 में 65 नक्सली मारे गए थे पूरे साल में, 2020 में 36 और 21 में 47, 22 में 30 और 23 में 24 आ गया था। तो ये लगातार डिक्लाइन जो हो रहा था इससे लग रहा था कि मामला नक्सलवाद समाप्ति की ओर है या बहुत कम पॉकेट्स में रह गए ये वो। और उनके भी हमले जो थे उनकी भी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हुई थी, लेकिन 2024 में ये अचानक से बढ़ा है, 24 से ये 80 के पास चला गया है। तो ये जो बढ़ा हुआ नंबर है ये बताता है कि शायद चीज़ें फिर से कहीं आकार ले रही हैं या फिर सुरक्षा बल ज़ोर से ज़्यादा मुस्तैद हैं और उन जगहों पर भी पहुँच कर काम कर पाने में और एक्शन ले पाने में कामयाब हो रहे हैं जहाँ पर पहले नहीं पहुँच पाते थे। मैं काशिफ आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप चूँकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके को देख रहे हैं समझ रहे हैं, ये जो घटना हुई है इससे किस तरह का संदेश गया है? क्या चुनावों के मद्देनज़र ये एक्शन है सुरक्षा बलों का, लोगों के अंदर इससे विश्वास पैदा होगा या फिर इससे एक तरह की चिंता भी पैदा होती है?
देखिए, जब भी मुठभेड़ होता है असर आम लोगों पे तो होता ही है, तो वो उनके लिए कहीं से भी फायदेमंद तो नहीं, ये पहली बात है। क्योंकि चाहे सुरक्षा बल हो चाहे वो माओवादी हो, ये दोनों मिलकर के आम आम जो वहां की जनता है, ये दोनों दोनों तरफ से क्रश होते हैं, तो आम के लिए तो ये फायदा नहीं है, चाहे वो चुनाव से पहले हो चाहे बाद में। अगर मैं रिपरकशन की बात करूं तो वो नुकसान ज्यादा है चुनाव से पहले इस तरह की चीजें, क्योंकि आदिवासी नहीं चाहते हैं कि विद्रोह इस तरह की चीजें हो और लोग मारे जाए, ये एक पहली बात। दूसरी बात कि 2021 हमको याद होगा कि एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था जिसमें करीब हमने 28 जवान खोए थे, और इसमें हिड में का नाम सामने आया था कि कैसे उसने सारी चीजें प्लान की और लोगों को मारा। लेकिन बीच में कुछ शांति दिखी और छोटे छोटे मामले, हमने छुटपुट घटनाएं इधर से उधर से देखी कि जहां पे कभी सुरक्षा बल के कुछ लोग हो जा रहे हैं, कई बार वहां के लोग हो जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो देखनी पड़ेगी, जो एज अ मध्य प्रदेश को ज्यादा नजदीक से देखने पे समझ में आती है, कि कुछ वक्त से पिछले 2-3-4 सालों से एक एमएमसी कॉरिडोर क्रिएट हुआ है। ये क्रिएट हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीन, इसीलिए इसको एमएमसी कॉरिडोर कहते हैं। और ये कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भी काफी कोर जोन तक ये फैला हुआ है। और जो मध्य प्रदेश में जो ये खत्म हो गया था माओवादियों का इम्पैक्ट, वो फिर से एक शेप ले रहा है पिछले 3-4-5 सालों से, हम कह सकते हैं, और पिछले 3 सालों से काफी विजिबल है। और अगर मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो अब तक उन लोगों ने करीब 1 करोड़ के नामी नेताओं को, मायूस नेताओं को अब तक वो मार गिराया उन्होंने। इसी महीने की अगर मैं बात करूं तो पहले वीक में ही एक घटना हुई, 2 लोगों को जो उनके लीडर कमांडर थे उनको मारा गया, और करीब उन पे 20 लाख के आसपास का इनाम था। तो मैं ये कहूंगा कि जो थोड़ा सा फोकस है वो मध्य प्रदेश से हट गया था, वो वापस मध्य प्रदेश की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो वहां सिकुड़ रहे हैं, तो उनका एक्सपेंशन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार जो इंटरवेंशन बढ़ रहा है, इस वजह से इनका दायरा कम हो रहा है, लेकिन ये रिटेलिएट कर रहे हैं जब भी इनको मौका मिल रहा
आपने
है।
मध्य प्रदेश
जैसे
का जिक्र
21 में हमने
किया,
देखा कि इन्होंने रिटेलिएट किया था।
मध्य प्रदेश का जिक्र किया आपने, मध्य प्रदेश में कुछ क्या हमारे पास हाल फिलहाल के कुछ घटनाएं या कोई कुछ आंकड़े हैं?
बिल्कुल है, मैंने कई खबरें भी इस पे की थी। लेटेस्ट की एक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं डेट के साथ 2 अप्रैल की एक घटना है कि दो लोगों को मारा गया जिनके ऊपर करीब 43 लाख का रिवॉर्ड था लांजी में, ये बालाघाट में। ये बालाघाट पड़ता है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हम लोग कहते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो 3 गढ़ है वो बालाघाट में पड़ता है। कहने को वो 33 गढ़ ही है लेकिन 36 कहते हैं उसको। तो 3 गढ़ जो ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे, तो इसपे गढ़चिरौली, बांधवगढ़, कान्हा और ये महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करते हुए ये कॉरिडोर बना है जो बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अलग से हॉक फोर्सेस बनाई हैं और ऑपरेशन कंटिन्यूअसली उसको वो कंडक्ट कर रहे हैं। और पिछले 2 साल 3 साल का अगर हम माने तो उनका कहना है कि करीब 1 दर्जन के आसपास लोगों को उन्होंने मारा है, जिन पे करीब 1 से 1.5 करोड़ तक का इनाम अब
जी
तक ओवरऑल रहा है। जो लेटेस्ट की बात करूं तो मैं 43 लाख का उनपे इनाम था, दो लोगों को मारा, उनके पास से लेटेस्ट वेपन मिले। तो ये जो मध्य जो जो भीड़ छत्तीसगढ़ से की तरफ सिकुड़ रहती दिख रही है हमको, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ थोड़ी सी बढ़ती दिख रही है।
ओके ठीक बात। शार्दुल
देखिए, मुझे इस विषय पर बहुत ही सीमित जानकारी है। मुझे कुछ जाना ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये क्षमा चाहता हूँ, बट मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं पढ़ता। लेकिन इतना मुझे पता है, हमारी जो रिपोर्ट वर्षों में होती रही हैं दोनों तरफ की, कि ये अन्याय दोनों तरफ से होता है, सुरक्षा बलों की तरफ से भी। जैसे पहले सलवा जोड़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल था उसका, लेकिन उसको बहुत साल हो गए
और
उसके उस
अदालतों ने बहुत सारे फैसले दिए जिसमें उन्होंने
हाँ
कहा कि आपने एक्सेस किया है
एक्सेस किया है और
फोर्सेस
लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है।
ने।
लेकिन इस डिस्क्लेमर के बाद भी अंदरूनी हथियार उठा के जो क्या कहते हैं क्रांति टाइप का, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका समर्थक नहीं हूँ। अगर आप वो करना चाहते हैं तो फिर हम सब के पास
नहीं,
बहुत
फिर स्टेट के पास हथियार चलाने का लॉजिक
नहीं,
रिप्रेजेंट।
वो भी चीज़ भी है फिर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की वेदना कम या ज़्यादा है, लेकिन सबका जीव ऐसा नहीं है कि केवल कुछ खास ही लोगों का या खास जगह के लोगों का ही जीवन ज़रूरत से ज़्यादा वेदना और दर्द भरा रहा है या उसे ज़्यादा यातनाएं मिली हैं। अगर हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं तो फिर हमें ये चीज़ भी माननी पड़ेगी। आप सेलेक्टिवली चूज़ नहीं कर सकते, और हथियारबंद क्रांति अगर आपको करनी है तो फिर वो देश देश नहीं है, फिर वो आप उसका पूरा प्रारूप बदल जाएगा।
मुझे थोड़ा सा इस पे दो तीन बातें हैं मैं
नहीं
कहूँगा, है
बिल्कुल नहीं,
ना। कुछ तो सर मतलब सहमत हूँ मैं शार्दुल जी की बात से कि हथियारबंद क्रांति से तो बहुत ज़्यादा हल नहीं निकलता है। लेकिन पिछले दिनों में जैसे लद्दाख में 21 दिनों का आमरण अनशन भी किया
उससे भी नहीं
सोनम
निकल रहा।
वांगचू जी ने भी, और
हाँ
सरकार अगर बिल्कुल असंवेदनशील हो तो उससे भी नहीं निकलता है। लेकिन तो हल निकलता है जैसा आज पहले चरण में मतदान हो रहा है उससे।
अब मैं एक दो चीज़ें इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो शार्दुल बात कर रहे थे और जिस चीज़ को मैं कहना चाह रहा था उसको पूरा कर दिया विकास ने कि हिंसा हिंसा कहीं पे भी किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकती, खासकर जब आप किसी स्टेट से मुकाबिल हो, स्टेट से आपको संवाद करना है या कोई मांग करनी है, कुछ हासिल करना है, तो हिंसा उसका विकल्प नहीं है। लेकिन लोग जो हैं एक अजीब से कुचक्र में फंस गए हैं। वो कुचक्र ये है कि आप गांधीवादी तरीके से भी कुछ पाने का भरोसा आपके अंदर बचा नहीं है, और जब आप ये कहते हैं कि आप गांधीवादी तरीके से भी कुछ पा नहीं हासिल नहीं कर पा रहे हैं इस देश में, जैसा कि सोनम वांगचुक के साथ वहां पर हुआ या और भी बहुत सारे, हमने नर्मदा के आंदोलन देखे, हमने बहुत सारे आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, जहां पर गांधीवादी तरीकों से कुछ हासिल नहीं हो पाया, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि हिंसावादी या हथियारबंद आंदोलन जायज है? जायज नहीं है। इस चीज के बावजूद कई बार कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जैसे ये सरकारों की जो संवेदनशीलता है वो किस लेवल की होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए। संविधान और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में, किताबों में सबके बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे धर्मशास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग क्या करते हैं हमारे आपके जीवन में सब पता है कि हम छोटी छोटी ओछेपनों से बाज नहीं आते हैं, हम छोटे छोटे चिंदी चोरी से बाज नहीं आते। लोग अपने जीवन में हर तरह के काम करते हैं, इसीलिए इस समाज में अपराध है और इसीलिए इस समाज में पुलिस और सुरक्षा और कानून और कोर्ट और कचहरियां हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अपने आप में एक पूरे बर्ताव इस समाज के ऊपर रोशनी डालने के लिए पर्याप्त है। मैं ये कह रहा था कि जब आप संविधान कानून और इस तरह की बातें कहते हैं कि सब कुछ है, आपको उस दायरे से मांगना चाहिए, आप एक चीज़ को समझिए कि इस देश में एक मंदिर बना, भगवान राम का मंदिर बना, और उस मंदिर के लिए कितनी सारी बातें कही गई, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं कि किसी ने उस मंदिर पर, वहाँ पर एक मंदिर होता था 500 साल 600 साल पहले, क्या हुआ हम में से कोई नहीं था, हमें कुछ नहीं पता वहाँ क्या था, मान लीजिए वो स्थान आस्था का केंद्र था, ये वो वहाँ पर हमने जो देखा वहाँ पर एक मस्जिद था, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो जो चीज़ गिरी वहाँ पर एक मंदिर बन गया, जायज है आज की तारीख में, क्योंकि कोर्ट ने कहा, सरकार ने बनाया, सब कुछ हो गया। अब आप इस नज़रिए से देखें कि इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़के एक जायज़ चीज़ को, जो कि आधुनिक कानूनों के हिसाब से देखा जाए, जिस संविधान के दायरे में हम देखा जाए, तो बहुत सारे उस पर वाजिब सवाल खड़े होते कि हमने हमारे देखते देखते वहाँ पर एक मस्जिद थी मौजूद। खैर, अब आप इस चीज़ को वहाँ पर ले जाएं, उन आदिवासी इलाकों में ले जाएं और उस नज़रिए से देखें जहाँ पर बड़े बड़े खदाने, बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं, उनके लिए उन पेड़ों का, उन पहाड़ों का, एक खास टीले का, एक खास पोखरी का उतना ही बड़ा महत्व है, उतना ही धार्मिक महत्व है जितना कि आपके लिए राम मंदिर का अयोध्या में एक खास स्थान पर हो सकता है या होता है। उस भावना का कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर बुलडोजर चलाकर आप जब चाहे एक झटके में दे देते हैं। आप उड़ीसा में देख लें, आदिवासियों के तमाम वो उन पहाड़ों की पूजा करते हैं, उन किसी किसी खास किस्म के एक उसकी पूजा करते हैं, उसकी वो श्रद्धा है, उनकी आस्था है उस पर। अगले दिन कोई कंपनी आती है और उसने पूरा एक खोद के और वहाँ पर एक नकली, वो वहाँ से कहीं से लोहा निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, उस मिनरल के नाम पर उन चीज़ों को ख़त्म कर देते, उनकी आस्था कोई सम्मान नहीं। तब आस्थाओं को लेकर जो दोहरापन है वो बहुत सामने आ जाता है हमारा, कि हम किस आस्था की बात कर रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि आप शार्दुल हैं, मैं हूँ, जहाँ पर रहकर हम अपनी बात को करते हैं वो एकदम डिफरेंट पायदान पर है। एक आदिवासी जहाँ पर रहकर अपनी बात उठा रहा है वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज है, बहुत ही पिछड़ा है। उसकी बात को यहाँ तक पहुँचाना, लोगों के कान तक पहुँचाना, जो लोग उनके लिए कानून बना रहे हैं, वो दूर दूर तक उसकी उस संवेदना से किसी तरह का इत्तफाक भी नहीं रखते हैं। सोचना और उससे सरोकार रखना, उसको महसूस करना तो बहुत दूर की बात है।
तो मैंने उस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं विषय का जानकार नहीं हूँ। जो हम ये विचार के उस पर बात कर रहे हैं तो मेरा ये मतलब था, मैं उसे क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था लोगों की वेदना कम है, और इस बात में कोई मतलब रत्ती भर भी शक नहीं कि भारत के वनवासी आदिवासी समाज का ही सबसे ज़्यादा दमन हुआ है और वो सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म ने किया है कि जिसको जहाँ माइन बनानी है। और मेरे रुष्ट होने का एक कारण ये भी है, एक चीज़ की परिणति जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे दोस्तों के थ्रू जुड़ा हुआ था, वो वन से ही जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरा इस हफ्ते मूड भी खराब है, जो मैं शुरू में कह रहा था कि इस देश में किसी की पूछ नहीं है आज की डेट में, केवल सब बयान देने को है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट देने को है, और कोई किसी की मदद के लिए नहीं उतरता। ये बात आपकी बात बिल्कुल शत प्रतिशत ठीक है, मैं उससे ज़रा भी नहीं कर रहा। और दोहरापन केवल आस्थाओं का, और मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि बयान का या उसकी जिरह करने का किसी एक इशू का, वो नहीं है। दोहरापन लोगों के किसी एक विषय के समर्थन में भी है कि वो मौखिक ज़्यादा है, उसका तार्किक और जीवन में उतरने वाला बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अधिकतर लोग, शायद मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं वो गुस्सा उभर के बाहर आ रहा है, तो अधिकतर लोग केवल वो उन जिन लोगों को ज़रूरत है मदद की उनका फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से मदद करने को उतरते हैं। तो मैं आपकी बात से शत प्रतिशत राजी हूँ, पर मेरा केवल लिमिटेड पॉइंट ये था कि भाई कहीं ना कहीं जब आप हिंसा वाली जो बात आ जाती है, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति ने बंदूक उठाई उसकी मनस्थिति का तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैं तो वैसे भी चर्चा में भी कह चुका हूँ मैं तो अहिंसा का पुजारी, हम महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते हैं पर मैं अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ। तो अगर मैं उस जगह पर होता तो शायद मैं और भी हिंसक होता, मैं उसको जज करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन केवल एक जिसे कहते हैं ना आप, लाइक एज एन लॉजिकल पॉइंट रिमूव फ्रॉम ऑल रियालिटीज, अंततः हमें इसका इलाज, इस सब का अपने तंत्र के अंदर ही सुधार करके ढूंढना होगा। ये बहुत एस्पिरेशनल और बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा, और खासतौर से वहाँ जहाँ दशकों से दमन चल रहा है।
ठीक
तो, लेकिन इससे ज़्यादा स्टूडियो में बैठ के मैं और क्या कह सकता हूँ।
हाँ काशिफ आप कुछ जोड़ना
सर,
चाहते हैं?
आपने जो बात रखी कि उनके गांधीवादी तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका आउटकम नहीं है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल हसदेव है, जो आपने सुने होगा कि भाई काफी वक्त से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे
आदिवासी
हैं,
वहां
कांग्रेस
महीनों
सरकार,
से, 6 महीनों से पड़े रहे, सरकार
हाँ
ने कान नहीं धरा।
हाँ वो लगातार धरने पे बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे वक्त से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात पिछले 1.5-2 साल तक नहीं सुनी गई। और इवन कि जब कांग्रेस की सरकार, तो ये था कि कम से कम वो प्रदर्शन कर पा रहे थे, है ना, लेकिन खास करके अभी सरकार बदलने के बाद उनके पास से वो हक भी चला गया, और जहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे उसके आसपास की जगहों को रिजल्ट के 2-4 दिनों बाद से ही वहां पे कटाई और शुरू हो गया, और जो हाथी जानवर वहां पर मौजूद थे वो सीधे अब रेसिडेंशियल एरियाज में जा रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक तो ये
ठीक बात।
एग्जाम्पल। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मुठभेड़ होती है और उसमें ज्यादातर सीआरपीएफ और डीएसजी के जवानों को यूज किया जाता है, तो ये बड़ा अच्छा टर्म है डीएसजी, जो हम लोग ये बात कहते हैं। सीआरपीएफ तो हमें समझ में आता है कि भाई एक ट्रेंड और मिलिट्री फोर्स है, लेकिन डीएसजी जो है वो कौन लोग हैं? ये दो वो उस तरह के लोग हैं या तो जिन्होंने सरेंडर किया, जो माओवादी थे जिनके पास बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, या तो ये वो होते हैं, या तो फिर गांव से किसी को भी पकड़ करके जिसको इंटरेस्टेड हो कि हाँ मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कमाने का, कुछ करने का, तो रोज की ह्यूमिलिएशन से बेहतर है कि डीएसजी में शामिल हो जाओ। तो क्योंकि डीएसजी में शामिल होते ही उसके पास इनॉर्मस पावर आ जाती है, तो ये इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें आगे उनको भेजा जाता है। और ज्यादातर जो हमने 2021 में देखा कि जो 28 हमारे जवान शहीद हुए, उसमें ज्यादातर डीएसजी के ही लोग शामिल थे, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते हैं ना उस आर्म्स के साथ, ना उस तरह के उतने सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ना इतना टेक्निकली वो साउंड होते हैं। हमने 2021 में एक स्टोरी की थी, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करूंगा, कि लोन वरट्टू करके एक स्कीम लाई गई सरकार के जरिए कि कम बैक होम, गोंडी में उसका मतलब होता है, जिसमें ये बात कही गई कि भाई जो सरेंडर करेगा उसको हम नौकरी भी देंगे और उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे, सारी तरह की चीजें। लेकिन जब हम लोगों ने उस स्कीम के अंदर घुस के जाना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो देख रहे हैं कि आम आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कई बार वहां नहीं रह रहा है, उसका नाम सरेंडर की लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि सरेंडर करने वालों के जितने लोगों को सरेंडर कराएंगे उसका उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, लोकल प्रशासन को उनके पास का फंड होता है जो यूज किया जाता है। उसके बाद कई बार इस तरह की केसेस आपको मिलेंगे कि गांव में प्रशासन फोर्सेस गई और वहां से कुछ लोगों को उठा के ले आई, ये कह के कि ये भाई ये नक्सली है, जबकि कोई सीधा लिंक नहीं मिला। 3 महीने 6 महीने के बाद पता चलता है कि या तो वो उसकी मौत हो गई, जैसे हमने एक केस को मैं हमने एक स्टोरी की थी टीआरटी वर्ल्ड के लिए भी और न्यूज क्लिक के लिए भी, जिसमें इस बात को हम लोगों ने जिक्र किया था कि कैसे कि लोगों को ला करके बंद रखा गया और उनको उनकी मौत हो गई टॉर्चर से, और उनको बाद में कुछ और बता करके उनको हटा दिया गया,
ठीक बात।
जबकि लास्ट तक बॉडी नहीं दी गई। तो इस तरह के सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट में जो जो लोग पिस रहे हैं वो है आम लोग हैं, माओवादी जो ट्रेंड है, सीआरपीएफ और ये लोग अपने ट्रेंड है, डीएसजी जो उन्हीं के बीच के लोग हैं और जो वहां के लोकल हैं, यही लोग पिस रहे हैं। कब तक पिसेंगे उसका कोई सोल्यूशन
ये
नहीं है।
भी एक इसका पहलू है, और आप लोगों को ये हमारे लिए सबके लिए एक जानकारी भी है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर। चर्चा काफ़ी विस्तार से हमने तीनों विषयों पर बात की है। अब हम आखिरी चरण में हैं चर्चा के, और रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। मैं चाहूँगा शार्दुल, सबसे पहले इस चर्चा में आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए इस हफ्ते।
देखिए, इतनी बातचीत के बाद एक रिकमेंडेशन तो मैं ये देना चाहता हूँ, हो सके तो अपने अंदर सच्ची संवेदना पैदा करें विकलांगों के लिए और लोगों के लिए। अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए भी ईमानदार रहें कि भाई हमें मतलब नहीं है, झूठ ना फैलाएं, झूठ लोगों को ज़्यादा दुखी करता है। और मेरा इस हफ्ते कोई ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक है, वो भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर है। मुझे बचपन से एक्समैन कॉमिक ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो उस समय अमेरिका में नस्ल भेद के उससे शुरू हुई थी और सामाजिक विषयों का उसमें म्यूटेंट्स के रूप में दिखाया गया था। तो X97 फिर से आया है और वो बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन है, एनिमेटेड सीरीज आनी शुरू हुई है, वो देखें बस।
विकास, आप क्या रिकमेंड करेंगे?
सर, दो चीज़ें हैं। एक तो आकाश आनंद का इंटरव्यू जो हमने रिसेंटली किया है, वो इस लिहाज से कि किस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि आइडियोलॉजिकली उनमें कुछ चेंज आया है बसपा की, उस तरीके, तो उस लिहाज से मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और दूसरी फिल्म आई हाल ही में नेटफ्लिक्स पर, चमकीला,
यही मैं भी
तो
रिकमेंड करने वाला हूँ।
ओह
हाँ
अच्छा, तो
ठीक है।
वो फिल्म में जितने विषयों पर हमने बात की है वो लगभग
कई सारी चीजें
उसमें आती हैं, तो इस वजह से।
काशिफ, आप क्या रिकमेंड करेंगे?
सर, रिसेंटली मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जिसके जिसको मैंने देखी और ये ऑस्कर नॉमिनेटेड भी रही है, वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। जो इसमें जो यूनिकनेस ये है कि ये एक मिलिनेयर रहता है अमेरिका का, जो एक टेक्निक योगा के जरिए एक टेक्निक डेवलप कर लेता है और उससे वो बिना आंख बंद किए भी वो सब कुछ बहुत क्लियरली देख सकता है। और ये 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है और योगा और कई चीजें आप जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों का कोई हमारे हमारे पास बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो जरूर देखनी चाहिए। इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री।
ठीक बात। तो मेरा भी रिकमेंडेशन वही है, अमर सिंह चमकीला, जो कि पंजाब के सिंगर थे, एक पंजाबी गायक थे, और उनकी वाइफ अमरजोत कौर, इन दोनों की कहानी है। इम्तियाज़ अली ने बहुत दिनों बाद एक फ़िल्म बनाई है, काफ़ी चार पाँच सालों के अंतर के बाद उनकी कोई फ़िल्म आई है, बड़ी दिलचस्प फिल्म है। और इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, मसलन अमर सिंह चमकीला जो थे बहुत पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिंगर थे, लेकिन दलित जाति से थे, दलित थे। और दूसरा मेरे ख्याल से 24-25 साल की उम्र में इन दोनों की, 25 से 26 साल की उम्र में दोनों की हत्या हो गई, गोली मारकर मार दी गई। और उसके पहले की जो कहानी है, कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, उसमें ये है कि कैसे कास्ट अपना रोल प्ले करता है, कैसे बाकी चीज़ें। चमकीला के ऊपर आरोप ये था कि वो जैसे आजकल भोजपुरी में अश्लील गानों की बाढ़ है, हमारे तमाम जितने बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिखते हैं भोजपुरी के बड़े चेहरे, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे रवि किशन हो, रवि किशन तो सिंगर नहीं है लेकिन एक्टर है, पर भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने भी वही गंद फैलाई है, तो अश्लीलता, उस तरह के गाने चमकीला गाते थे और अपनी पत्नी के साथ मंच से गाते थे। उन दोनों का अपना एक डुएट होता था जिसको लोग बहुत पसंद करते थे उसमें। अब उसमें धर्म कैसे रोल प्ले करता है, ये स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए आप लोग फिल्म देखिए, क्योंकि सारी जानकारी बस एक लाइन बस यहाँ पर अंडरलाइन करके और मैं इस बात को ख़त्म कर दूंगा कि अगर अमर सिंह चमकीला दलित नहीं होता तो शायद किसी को इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें एक लाइन है और एक सीन है जिसमें ठेकेदार टाइप पांच बड़े लोग बैठे थे और उनके सामने अमर सिंह चमकीला पेशी थी, एक ही लाइन कहता कि क्या ये अश्लील गाने सिर्फ इस समय मैं ही गा रहा हूँ, मैं ही गाता हूँ, इसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। तो इस रिकमेंडेशन के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ रोकेंगे, चर्चा पूरी हुई। स्मिता, काशिफ, शार्दुल और विकास, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से वही जानकारी, वही अपील, न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम हमारे जो चुनाव के फंड हैं, इलेक्शन फंड, न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट के साझा चुनाव कार्यक्रम हैं, इनको पूरा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम ना तो कोई प्रायोजित कार्यक्रम चलाते हैं, ना कोई विज्ञापन लेते हैं, ना किसी सरकार से, ना किसी कॉरपोरेट से, सिर्फ हमारी मदद, हमारे कार्यक्रमों को आप मदद सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, सब्सक्राइबर हमारे, इसको पूरा करें, क्योंकि पत्रकारिता जब आपकी मदद से, आपके सहयोग से चलेगी तभी आपकी बात करेगी। शिकायतें बहुत आप लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, कि मीडिया जनता की बात नहीं करता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है क्योंकि मीडिया के मुंह में, मीडिया के पेट में जो खाना है, जो रोटी है, वो कहीं और से आ रही है। धन्यवाद।
बाय बाय।
न्यूज लॉन्ड्री इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर पेइंग सब्सक्राइबर्स। वी डोंट रन ऑन कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एड्स। यू टू कैन बी पार्ट ऑफ चेंजिंग द न्यूज मॉडल। गो टू newslaundry.com/subscription, बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी दैट पेज टू कीप न्यूज इंडिपेंडेंट। For the smoothest News Laundry experience, download our app, watch our shows, listen to our podcasts, read our reports, stay informed, pay for news, protect democracy, save the world.